आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय प्रभु, आज रात्रि हम आपको प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं, जहां हम एक महान सभा में मिलेंगे, जहां ये कभी समाप्त ना होगी। आनंद आनंद भरे गीत, जैसा कि हम आपकी आराधना उन अनंत युगों से होते हुए जो कि आने वाले हैं करते हैं। हम आज रात की सभा के लिए इस पर आपकी आशीष चाहते हैं। हम इस आराधनालय पर आपकी आशीष मांगते हैं, कार्यकर्ताओं पर, सेवकों पर, इसके सहयोगी कार्य करने वाले संगी सेवक और सारे प्रभु, इसके लिए हम आपसे आशीष चाहते हैं जो बहुत मीलों से इस सभा में आए हैं। इनके ऊपर दया का हाथ रखें, जबकि वे वापस अपने घरों की ओर यात्रा में जाते हैं। प्रभु इसे प्रदान करें, हम इस स्थान में बहुत सी बार मिलने पाए, ये स्थान जो परमेश्वर का घर कहलाता है, आराधना के लिए। प्रभु उनको आशीष दें जो आज रात्रि वापस आए हैं इस टेलीफोन के द्वारा। होने पाए प्रत्येक व्यक्ति जो बचाया हुआ नहीं है, यीशु मसीह को अपना बचाने वाला पा सके आज रात्रि। सारी बीमारों को और अपाहिजों को चंगा करें। पिता, आपका सेवक आपकी सेवा के लिए उपस्थित है, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु प्रत्येक को आशीष दे। आज रात्रि यहाँ होने के लिए बहुत आनंदित हूँ। मैं बस अंदर आया जब भाई अर्नी गाना गा रहे थे, अपने गीत का अंतिम भाग में थे, एक पंडुकी के पंखों पर। निश्चय ही सुंदर कविता, निश्चय ही सुंदर, और मैं जानता हूँ कि ये समय अनुसार है, इसलिए अब हम बहुत ही धन्यवादित हैं। और आप सब लोग जो सारे रास्ते यहाँ वापस आए हैं, मैंने इच्छा की कि आप यहाँ केवल ये देखने के लिए हैं कि लोगों के चेहरों पर आशाओं की प्रतीक्षा, जैसे कि आज रात्रि भवन में वे भीड़ लगाए हुए हैं, एक शानदार समय में। हम भाई जैक मूर और बहन जैक मूर को धन्यवाद देना चाहते हैं, और भाई नोएल, भाई बूटलियर, भाई ब्राउन और ये सारे साथी, यहाँ सारा आराधनालय, समस्त कार्यकर्ता की हमें फिर से निमंत्रण दिया है। ये वास्तव में एक प्रकार से इसे संयोग नहीं कह सकता, ये बस साधारणता में परमेश्वर का हाथ है जो कर रहा है। यहाँ एक भाई है जिसने कुछ समय पहले एक स्वप्न देखा था इस बात के घटने के विषय में। कहा, मैं इंडियाना मॉर्कनसन में सफेद पैंट पहने खड़ा था। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही था जब मैंने यहाँ भाई जैक को यहाँ सभा के लिए बुलाया, बिल्कुल ठीक कार्सन कैलोरिडा में। इंडियन मॉर्कनसन्स और एक सफेद लिवाई पैंट पहने हुए भाई लियो, यदि आप सुन रहे हैं, मैं आपसे कुछ मिनटों में मिल रहा था। इस प्रकार जब इस सभा ने अपना जन्म स्थान लिया ठीक यहाँ पर। अब ये रविवार रात्रि है, मैं जानता हूँ आप में से बहुत से आज रात्रि घर जाने को गाड़ी चलाएंगे, कुछ लोग सुबह चलाएंगे। मुझे अगले दो दिन गाड़ी चलानी है, और इसलिए हम आपको अधिक देर नहीं रोकेंगे। और मैंने इसे पुराने समय की रात्रि बनाने का यत्न किया, वो रात्रि जब भाई ब्राउन और भाई जैक और हम सारे वर्षों पहले बीमारों के लिए प्रार्थना किया करते थे, बीमारों के लिए उसी प्रकार से प्रार्थना करेंगे जैसे हमने तब की थी। अब क्या आप मुझे वहाँ पीछे सुन सकते हैं? मैंने इन माइकों को थोड़ा सा नीचे कर रखा है क्योंकि मेरा गला खरखरा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ, ये छोटी घटना जो हुई है, क्यों वे थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि वहाँ एक भाई था, संभवतः आज रात्रि यहाँ सभा में है। वो अभी नामधारी वाद में से बाहर निकल कर आया है, शेरपोर्ट में आया, इस संदेश के विषय में सुनना चाहता था, और वो गड़बड़ा गया, नहीं समझ पाया कि वो कहाँ पर था, इसलिए वो नीचे नगर में चला गया। उसने लोगों को इकट्ठा हुआ देखा, उसने कहा, क्या यहाँ पर बिली ब्रैनम प्रचार करने जा रहे हैं? उसने कहा, नहीं, यहाँ बिली ग्राम चलचित्र के द्वारा प्रचार करने जा रहे हैं। उसने कहा, अच्छा, मुझे क्षमा करना, मैं गलत जगह पर आ गया। उसने कहा अब प्रभु मैं कहाँ जा सकता हूँ? बोला, उसने सड़क पर चलना आरंभ कर दिया, नहीं जानता था कि ये क्या है, और यहाँ अंत में एक बड़ा आराधनालय था, टेक्सास स्ट्रीट, और वहाँ आराधनालय पर बड़ी सफेद क्रूस थी। बोला, प्रभु ने उसे बताया, बस चलते रहो। बोला, जब वो वहाँ पहुँचा, वहाँ था, कहा, भाई यही होना चाहिए, यहाँ बहुत सी कारें चारों ओर खड़ी थीं, और कहा, एक दुल्हन और दूल्हा आराधनालय से बाहर आ रहे थे, वो अंतिम रात्रि थी, वहाँ एक शादी थी, मैंने उन्हें बाहर आते देखा। प्रभु ने कहा, अब यही है जो है कि तुम नामधारी वाद से बाहर आ रहे हो कि दुल्हन में जाओ, दूल्हे के संग जाओ, समझे। मैं अपनी पत्नी से टिप्पणी कर रहा था रास्ते पर आते हुए कि कैसे चांद और एक सितारा क्रूज के ऊपर लटक रहे हैं जैसे कि हम अंदर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मैंने इस प्रकार की छोटी चीजों को देखा, संभवतः मेरे विश्वास संपूरक परमेश्वर में और मेरी सेवकाई। ह्यूस्टन में मैं आज रात्रि सोच रहा था ये विक्टर डी ल्यूक, ये वो फ्रांसीसी था, वो एक वास्तविक फ्रांसीसी है। विश्वास करता हूँ कि मैं उस दिन आपको बता रहा था कि जब मैं बोल रहा था नामधारीवाद को वास्तविक मसीहत से अलग कर रहा था, और एक व्यक्ति मुझसे एक प्रकार की छोटी सी चर्चा कर रहा था इस विषय में, उस मशहूर नामधारीवाद की पेंटिकोस्टल कलीसिया से, और इस प्रकार से डॉनी हेनरी, मैं सोचता हूँ वो किसी फिल्मी सितारे का रिश्तेदार का भाई है या कुछ और, वो एक बैप्टिस्ट था, और वो प्रचार मंच पर भागता हुआ आया और अपने हाथ मेरे चारों ओर डाले और बोला, भाई ब्रैनम, मैं आशा करता हूँ कि ये धर्म विरोधी नहीं परंतु ये प्रकाशित वाक्य का 23वां अध्याय है। और जब वो कुछ और कहने जा रहा था उसने अन्य भाषाओं में बोलना आरंभ कर दिया, और ये तीन फ्रांस के लोग थे, एक फ्रांस की महिला, एक बड़ी भारी तेज रंग की लुइविल से, हो सकता है आज रात्रि यहाँ बैठी हो, एक कागज के टुकड़े पर लिखा जो उसने कहा। तब विक्टर ली ड्यूक एक सेवक, उसने वही चीज लिखी और वे उन टिप्पणियों को मिला रहे थे या मिलाने जा रहे थे। एक हल्के रंग के बालों वाला, एक प्रकार के हल्के बाल, वहाँ पीछे खड़ा था, वहाँ पीछे चटा हुआ जितना वो हो सकता था, चलता हुआ आया और उन टिप्पणियों को देखना चाहता था। वो यूएन में फ्रांस का दुभाषीय था और वे तीनों टिप्पणियाँ एक सी थीं। और इसने ये कहा, क्योंकि तूने कठिन मार्ग चुना है, तूने ये चुना है, तूने लिया है, अपनी इच्छा के अनुसार लिया है। निसंदेह हम जानते हैं कि मूसा को अपना चुनाव करना था, कहा ये यथार्थ और सही मार्ग है क्योंकि ये मेरा मार्ग है, और तूने क्या ही महिमा में निर्णय लिया है, कहा इसी कारण स्वर्ग का एक बड़ा भाग तेरी प्रतीक्षा करता है, और ये अपने में वो है जो बनाएगा और एक महान जय दिव्य प्रेम की पूरी करेगा। वे सारे तीन एक से थे। मैंने सोचा आज रात वे मेरे पास बाइबल में हैं। मैंने इसमें देखा परंतु नहीं है इसका मूल लेख। डैनी हेनरी को नहीं मालूम जैसे मुझे मुश्किल से अंग्रेजी आती है। फ्रांसीसी को तो छोड़ दो, यदि आप इसमें ध्यान दें ये फ्रांसीसी भाषा के समान है। वे क्रिया को क्रिया विशेषण से पहले रखते हैं, और तीनों का अनुवाद बिल्कुल एक सा था। डैनी हेनरी ने कुछ समय पहले उसने बनाया। डैनी हेनरी हो सकता है आज रात्रि सुन रहा हो, संभवतः विक्टर ली ड्यूक, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो ट्यूसान में है, और आप जो ट्यूसान में हैं, कलिसिया में, ट्यूसान के आराधनालय में जहाँ भाई ग्रीन सेवक हैं, भाई विक्टर ली ड्यूक, मैं समझता हूँ कि वे फुट पार्क एवेन्यू जो राजमार्ग 80 पर जा रहा है, इधर से आ रहा है, वहाँ तंबू की सभा में है। यदि कल रात्रि आप वहाँ पर हैं, अगली रात्रि जहाँ कहीं वो जितनी देर वहाँ है जाकर उसे सुने, और डैनी उसके संग हो सकता है, और ये भी हो सकता है आज रात्रि वे आराधनालय में इसे सुन रहे हों, मैं नहीं जानता। ठीक इसके बाद डॉनी यरूशलम चला गया और कहा कि वो उस कब्र में वहाँ जाकर लेटा, चट्टान की सतह पर जहाँ यीशु की लोथ उसके पुनरुत्थान से पहले रखी गई थी, और कहा अचानक से मैं उसे याद आया और बोला, वो बाहर भागा और रोने लगा और वो बाहर चला गया और उसे आगाही मिली थी, वो व्यक्ति है जो पत्थरों से चीजें बनाता है, मेरा मतलब पत्थरों की कलई करना। उसने कहा वो वहाँ गया जहाँ वे कहते हैं क्रूस यहाँ गाड़ी गई थी, वो उतरा और चट्टान से एक छोटा टुकड़ा तोड़कर एक वर्ग इंच का या ऐसे ही कुछ अपनी जेब में रखा और उस प्रभाव में घर ले आया। जब उसने ये किया तो किसी चीज ने उससे कहा कि भाई ब्रैनम के लिए एक जोड़ा कमीज की आस्तीन के बटन बनाओ, इसलिए उसने इसे तेजाब में डाल दिया और आग से दिखने वाले जैसा चूना पत्थर से उसका रंग बदलकर लाल से पत्थर में हो गया, और उसने आस्तीन के बटन बनाए, और जब वो मुझे दिए उसने ध्यान नहीं दिया था, दोनों बटनों में ठीक बीच से होते हुए एक सीधी धारी थी। आज रात्रि मैंने उन्हें पहन रखा है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करूं। लाल रंग का पत्थर जैसे कि गिरती हुई लहू की बूंद हो, उसमें से होती हुई पतली सी धारी, ठीक वैसी जैसे उसने भविष्यवाणी में कहा, सीधा और सकरा मार्ग भविष्यवाणी में कहा, मैंने उसे ये दिखाया। डैनी, यदि तुम इसे सुन रहे हो, तुम या भाई ली ड्यूक्स, कोई भी, आज रात्रि पुराने समय जैसी रात्रि होने जा रही है, जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सीधे सक्रिय मार्ग में चलने में आनंदित हूँ, सुसमाचार के मार्ग में, वचन के मार्ग में, अपने प्रभु यीशु मसीह के संग। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अब आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा लंबे समय तक बात करूंगा और मैं आपको अधिक समय तक रोकूंगा। बिली ने कहा है 300-400 लोगों के लगभग हैं जिनके लिए प्रार्थना करनी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा अपने संदेश के साथ, जितनी जल्दी संभव हो सके, और फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करना। अब एरिजोना के लोगों के लिए अगले शनिवार रात्रि हम पूरा कर रहे हैं। उस शहर का नाम याद नहीं रख पाता हूँ, यूमा एरिजोना दावत घर में, फिर कैलिफोर्निया में हर रविवार प्रातः को लॉस एंजलिस होंगे और वहाँ उन स्थानों में जिनके लिए विचार किया है। आज रात्रि मैं पवित्र वचन में से एक विषय लेना चाहता हूँ। इत्तफाक से आज मैं कैफेटेरिया होटल में बैठा था, मॉरिसन के कैफेटेरिया में, भाई जैक और उनकी पत्नी और मेरी पत्नी। हम मॉरिसन के कैफेटेरिया में एक साथ थोड़ा समय बिताने को गए। हम बाहर नहीं रहे थे, स्त्रियां कभी भी एक साथ नहीं हुई। एक युवा व्यक्ति मेरे पास आया, उसका नाम ग्रीन है, वो भाई पेरी ग्रीन के पिता हैं, और उसने कहा, भाई ब्रैनम, आपको मालूम है उस रात्रि आप जॉनी पिन के विषय में बातें कर रहे थे, ये वास्तव में एक, ये क्या है, बॉबी पिन। उसने कहा, आप जॉनी पिन के विषय में बातें कर रहे थे, बोले मैं आपके लिए जॉनी पिन लेकर आऊंगा। उसने मुझे वो दी। अब ये एक जॉनी पिन है, महिलाओं ये बालों में नहीं चलेगी, एक जॉनी पिन। उसने कहा वो इसे वर्षों से प्रयोग कर रहा है अपनी बाइबल के पन्नों को पकड़ने के लिए, इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें एक असली जॉनी पिन दूंगा। इसलिए भाई ग्रीन, यदि आप यहीं कहीं हैं या इसे सुन रहे हैं, इस जॉनी पिन को एक बढ़िया इसे पकड़े रहे। अब हम सीधे वचन में जाना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ भजन संहिता 55 निकालें और मती 3 भी। और आज रात्रि मेरा विषय भाई अर्नी का विषय है, सफेद पंडुकी के पंखों पर। अब मैं सारी टिप्पणियों और वचन को लेने नहीं पाऊंगा जो यहां मेरे पास हैं। मैं उनमें से कुछ को छोड़ दूंगा, और क्योंकि मैंने संदेश के लिए प्रतिज्ञा की है, प्रभु ने चाहा तो अगले शनिवार रात्रि यूमा के लिए मैं इस पर प्रचार करना चाहता हूँ, उठा लिए जाने के लिए परिस्थितियाँ, यदि प्रभु ने चाहा तो। और भजन संहिता 53, मुझे क्षमा करें, भजन संहिता 55, कान लगा, क्षमा करें, 55, जी हाँ श्रीमान। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए खड़े हो गए हैं। मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते, तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। सेला, सेला का अर्थ आमीन है। दाऊद एक जंगल प्रेमी, जब वो निराश होता और लोग उसका विश्वास नहीं करते और शत्रु उस पर आ पड़ते, उसने कहा, यदि मेरे पास पंडुकी के से पंख होते तो मैं उड़कर जंगल में चला जाता और वहीं रहता। कितनी बार मैंने ऐसा सोचा, यदि मैं अपनी बंदूक दीवार से उतार कर और अपना थैला लेकर जंगल में चला जाता और फिर कभी वापस न आता। मैंने प्रभु से मांगा, यदि मैं उस दिन को देखने के लिए जीवित रहूं, मैं कभी भी अंत्येष्टि सभा नहीं चाहता। मैंने कहा, यदि मैं कहीं जंगल में जा सकता होता, कहीं भी पेड़ की टेकन से उस ब्लॉन्डी को टिकाता। ये मेरी बंदूक है, मुझे क्षमा करें, मैं ये अपनी पत्नी के आधार पर जो यहाँ बैठी है कह रहा हूँ। आप जानते हैं कि एक बंदूक मेरे एक भाई ने मुझे वर्षों पहले दी। मैंने बिना एक गोली खराब किए 55 शिकार मारे, उनमें से कुछ 700-800 गज की दूरी से। मैं इसे ब्लॉन्डी कहता हूं क्योंकि मेरी पत्नी श्यामला है, इसलिए उसने कहा मैं बजाय उसके बंदूक के बारे में अधिक सोचता हूं। परंतु इसलिए मैं इसे पेड़ के साथ रख देना चाहता हूं और कहता प्रभु किसी दिन जोसेफ को ये मिले, मैं पंडुकी के पंखों को लेकर उड़ जाऊं। परंतु जैसे एक बार वहां पहाड़ों में एक उकाब को देख रहा था और उसे उड़ते हुए देख रहा था, ये मेरी कहानी आप जानते हैं। मैंने कहा यहाँ होना अच्छा है प्रभु, जैसे कि पतरस ने कहा हम 3 मंडप बना सकते हैं। परंतु वहाँ नीचे पहाड़ की जड़ में एक बीमार अपाहिज प्रतीक्षा कर रहे हैं, खोए और मरते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम वो करें जो हम कर सकते हैं जबकि ये दिन है, और किसी दिन होगा सफेद उकाब के पंख नीचे आएंगे, वो हमें ले जाएगा। अब मत्ती 3:16 में मैं 16 और 17 पढ़ना चाहूँगा। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। दूसरे शब्दों में जिसमें मैं रहने के लिए प्रसन्न हूँ। अब हम कुछ मिनटों के लिए इस चिड़िया पर बोलना चाहते हैं। एक पंडुकी सदा से मेरी प्रिय चिड़ियों में से एक रही है, और पंडुकी के विषय में सोचते हुए एक पंडुकी वास्तव में और एक कबूतर एक सी चिड़िया है। एक कबूतर घरेलू पंडुकी है, ये दोनों एक ही परिवार के हैं। मैं ये देख चुका हूँ और ये एक ही परिवार है। एक कबूतर और एक पंडुकी, ये दोनों एक ही परिवार के हैं। इन चिड़ियों की आदतें विशिष्ट हैं। मैंने तंबू की सभा में कुछ वर्षों पहले यहाँ प्रचार किया था भाई मूर के साथ, मेमना और पंडुकी। मेरा अनुमान है आप सबको ये याद है, और कैसे वो पंडुकी बहुत ही शुद्ध चिड़िया है जो हमारे पास है, और मेमना सबसे नम्र जानवर जो हमारे पास है। ये दोनों बलिदान की चिड़िया और पशु हैं। ये यीशु मेमना होने का एक कितना सुंदर प्रतीक है, और परमेश्वर एक पंडुकी, और पंडुकी भेड़िये पर नहीं बैठेगी, उसका स्वभाव सही नहीं है। ये कुत्ते के ऊपर नहीं बैठ सकेगी, उसका स्वभाव सही नहीं है। ये तो मेमना ही होना चाहिए, दो स्वभाव एक ही होने थे, और इसी प्रकार से हमें होना चाहिए। हमारे स्वभाव गरजते हुए पापी से मेमने की नम्रता में होने चाहिए। क्या आपने ध्यान दिया, पंडुकी मेमने की अगुवाई करती है, और ध्यान दें मेमना हर चीज छोड़ देता है, उसे पंडुकी चाहिए। और देखिए कि पंडुकी उसकी अगुवाई कहाँ करती है, हमारे पापों सबके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ने को। अब परमेश्वर की पंडुकी उसके पुत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहती थी। उसका प्रतिनिधित्व बहुत ही शुद्ध और बहुत ही नम्रता वाले पृथ्वी के पशु के द्वारा किया गया था, पृथ्वी पर का जानवर जानदार। परंतु जब परमेश्वर ने स्वयं का प्रतिनिधित्व स्वर्ग में किया तो वो सबसे नम्र और बहुत ही शुद्ध चिड़िया के द्वारा वहाँ स्वर्ग में किया, एक पंडुकी। अब पंडुकियाँ वहाँ उनके बहुत ही विभिन्न प्रकार होते हैं। अधिकांश हमारी छोटी पंडुकी एक प्रकार से स्लेटी दिखने वाली चिड़िया है, तब एक सुबह वाली पंडुकी होती है, और फिर एक सांझ वाली पंडुकी है, और एक सनोरा कहलाने वाली पंडुकी भी होती है जो हमारे पास के घरों में होती है। एक छोटी स्लेटी सी, छोटी सी, उसके पंखों पर लाल धारियाँ। वहाँ बहुत प्रकार की पंडुकियाँ होती हैं और ये विभिन्न रंगों में होती हैं। ऐसी ही बात कबूतरों में भी होती है। अब पंडुकी बहुत विचित्र रीति से बनी होती है, उसके आदतों के कारण कि वो कोई गंदी चीज नहीं खा सकती, वो ये नहीं कर सकती क्योंकि वो इसके लिए नहीं बनी। अब मैंने सदा परमेश्वर की उपमा में होते हुए पंडुकी के विषय में बातें की हैं, और कौवा ढोंगी का प्रतीक है। एक कौवा पुराने मरे शव पर बैठ सकता है और खाता है सारे दिन, और सीधा उड़कर खेत में जाता है और पंडुकी के साथ गेहूं खाता है। परंतु पंडुकी गेहूं ठीक से खा सकती है, परंतु ये मरी हुई लोथ नहीं खा सकती। देखिए, वो ये नहीं कर सकती, वो इसे पचा नहीं सकती। और मुझे आश्चर्य हुआ वो ये क्यों नहीं कर सकती। वे दोनों पक्षी, दोनों चिड़ियाएं हैं, परंतु क्यों? ये उनकी बनावट है और इसी प्रकार ये एक सच्चे मसीही के साथ है। एक नामधारी मसीही वो सब कुछ भी खा सकता है, परंतु एक वास्तविक नया जन्म पाया मसीही संसार की चीजों को नहीं ले सकता, वो भिन्न बना हुआ है। मैंने पाया कि पंडुकी में कोई पित्त नहीं होता, क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से ये एक मसीही के साथ है, उसे किसी कड़वाहट की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, वो केवल परमेश्वर का भोजन खा सकता है, वो इसे घोलने के लिए कड़वाहट को नहीं लेता, देखिए ये प्रेम को लेता है ताकि वो खाना पचा सके। कड़वाहट, ओह, वे कहते हैं भाई वे इससे अंतर रखते हैं, परंतु प्रेम इसे सदा स्वीकार करता है, परमेश्वर का वचन। अब उसमें पित्त नहीं है, इसलिए वो नहीं कर सका। कोई भी बुरी चीज खाना ये उसके विरुद्ध है, और यदि वो ये करेगा तो वो मर जाएगा, परंतु वहाँ कोई खतरा नहीं, वो इसे खाने वाला नहीं है, ओह, क्योंकि उसे इसकी भूख नहीं है। और एक वास्तविक मसीही के साथ ऐसा ही है। क्या आप जानते हैं कि एक वास्तविक मसीह पर यहाँ तक कि पाप का कोई आरोप भी नहीं? दाऊद ने कहा, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पाप का दोषी न ठहराए। जब आप मेमने के लहू में धुल चुके, बनावटी विश्वास के द्वारा नहीं, परंतु मेमने के वास्तविक लहू से जो किया गया, परमेश्वर उसके लिए आप पर कोई दोष नहीं लगाता, क्योंकि आप लहू के नीचे हैं और वो इसे नहीं देखता। वहाँ लहू का बलिदान है। बात केवल ये है कि वो आपको देख सकता है ठीक वैसे ही जैसे उसने आपको संसार के रचने से पहले देखा, जब उसने आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा। बस वो इसे ही देख सकता है, क्योंकि जो कुछ भी कभी भी किया गया, आप हर चीज से छुड़ा लिए गए हैं, आप मेमने के लहू में धुले हुए हैं। इसलिए आप में कोई कड़वाहट नहीं, आप में कोई गंदी आदत नहीं, क्योंकि मेमने के लहू ने ये कर दिया है। और परमेश्वर आप पर कोई दोष नहीं लगा सकता आपके लिए पाप का बलिदान होने के बाद। वहाँ आपके लिए रखा हुआ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भाई आप कहते हैं ये मुझे बहुत सारा स्थान देता है, भाई ब्रैनम, जो मैं चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ, हमेशा। परंतु जब एक मनुष्य वास्तव में देख सकता है कि यीशु ने उसके लिए क्या किया है और पलट कर कुछ उसके लिए उल्टा करे, ये दर्शाता है कि उसने मसीह को कभी ग्रहण नहीं किया। मेरी एक पत्नी पीछे बैठी हुई है, वो मुझसे 10 वर्ष छोटी है और वैसे ही सफेद जैसा मैं हूँ। कारण ये कि वो मेरे और बाहर के संसार के बीच में खड़ी है। यदि मैं सागर पार जा रहा होता और मैं क्या ये कुछ इस प्रकार का परिवार रहने के लिए, यदि मैं अपना परिवार अपने चारों ओर जमा करूं और मैं कहता हूं, श्रीमती ब्रैनम इधर देखिए, आप ये अनुभव करना चाहती हैं कि आप श्रीमती विलियम ब्रैनम हैं, जब मैं चला जाऊं तो तुम्हारा कोई और पति ना हो, दूसरे पुरुष से आंखें ना मिलाना और ये सारी चीजें, तुम बिल्कुल भी इश्कबाजी ना करना, यदि तुम करती हो जब मैं वापस आता हूँ तो तुमको तलाक देने जा रहा हूँ। और वो पलट कर कहे, अब मेरे अच्छे पुरुष मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, जब तुम बाहर हो तो किसी और स्त्री को बाहर ना ले जाना, तुम ये वो नहीं करना, यदि तुम करते हो तो समझ लेना तुम्हें तलाक मिल गया जब तुम घर आते हो। अब वो क्या एक प्रेमी परिवार नहीं होगा? नहीं। अब यदि मैं उसको वास्तव में प्रेम करता हूँ, यदि भी मैं विश्वास करता हूँ, यदि मैं गलती करता हूँ और गिरकर कुछ गलत करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे क्षमा करेगी, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करती है। और यदि उसने किया, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उसे क्षमा कर दूंगा, निश्चय ही, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। परंतु यदि मैं उससे इस प्रकार प्रेम करता हूँ, जब तक मैं उससे इस प्रकार प्रेम करता हूँ, उसे कोई चिंता नहीं, यद्यपि वो मुझे क्षमा कर देगी, मैं बिना बात के आघात नहीं पहुंचाऊंगा, मैं स्वयं को संसार का सबसे बड़ा अपराधी अनुभव करूंगा। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता एक मिनट के लिए भी, मैं उसे बता दूंगा जो मैंने किया, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। भाई ये यदि मैं उससे इस प्रकार से मनुष्य का प्रेम करता हूँ, तो मेरा आत्मिक प्रेम मसीह के लिए कितना महान होगा। यद्यपि मैं सिगरेट पी सकता, मैंने कभी अपने जीवन में नहीं पी, परंतु यदि मैं चाहता वो मुझे इसके लिए क्षमा करता, मैं विश्वास करता हूँ वो कर देगा। यदि मैं शराब लूँ, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पी, परंतु मैं विश्वास करता हूँ वो मुझे इसके लिए क्षमा कर देता, और मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मेरी सहायता करे, मैं इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। ये चीज मुझसे जा चुकी, जब उसने मुझे कौवे से पंडुकी बनाया तो इससे अंतर आ गया, मेरी भूख और चीजें मुझे छोड़ गईं, और पाप मुझ पर नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य वो करने का नहीं, ये मुझ में नहीं है कि मैं ये करूं। अब दूसरी महान बात इस पंडुकी के विषय में, ये एक विचित्र चिड़िया है। क्या आपने कभी सारी चिड़ियाएं देखी हैं? मेरी एक प्रिय चिड़िया रॉबिन है। अब तुम लड़कों मेरी रॉबिन को मारना छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो। मेरी रॉबिन, आपको मालूम है कि इसकी छाती कैसे लाल हुई? आप जानते हैं, एक दिन एक पुरुष क्रूस पर मर रहा था, कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। परमेश्वर ने उस मनुष्य को छोड़ दिया और वो मर रहा था। उसके हाथों में कीले थी, उसके पांव और उसकी पसली से लहू बह रहा था, उसके सिर पर कांटों का ताज, उसके मुख पर से लहू बह रहा था। और एक छोटी चिड़िया पास से निकली, एक छोटी भूरी चिड़िया, और उसने ये देखा, सोचा ये एक बहुत ही दयनीय दृश्य है जो कभी उसने देखा है। और उसने सोचा वो बस एक छोटी सी चिड़िया है, परंतु उसने उन बड़ी क्रूर रोमी कीलों को उसके हाथों में गड़ा हुआ देखा, और वो अपनी छोटी चोंच के साथ उड़ी और उन्हें निकालने का यत्न किया। उसकी सारी छाती लहू से नहा गई, तब से ही ये लाल है। मैं भी अपनी छाती को उसके लहू से ढकना चाहता हूँ। जब मैं उससे मिलने आता हूँ, उसे छाती से लगाए रहना चाहता हूँ। मैं छोटी रॉबिन से प्रेम करता हूँ, परंतु आप जानते हैं, एक छोटी रॉबिन को नहाना पड़ा, परंतु आपको मालूम है पंडिकियों को नहीं, उसके पास एक प्रकार का तेल होता है उसके अंदर। वो तेल उसे साफ रखता है अंदर से बाहर की ओर। आप ये जानते हैं कि पंडुकी के पास होता है, पंडुकी स्वयं में से तेल लगाती है। क्या आपने कभी उसे पकड़ा और उसमें से वो महक सूंघी, एक कबूतर या कुछ? वो तेल उसके अंदर से ही उत्पन्न होता है। उसका शरीर तेल की ग्रंथि बनाता है जो उसके पंखों को सदा बाहर की ओर स्वच्छ रखता है, क्योंकि वो अंदर से बाहर की ओर स्वच्छ रखता है। ये ठीक बात है, ये एक बहुत ही अच्छी छोटी चिड़िया है। अब मैं जानता हूँ कि तुम उसका शिकार कर सकते हो। मैं सोचता हूँ लुविल में ये मत करना। ओह, मैं ये नहीं कर सका। मैं समझता हूँ यदि मैं भूखा था तो ये ठीक होता, परंतु मैं इस पर गोली नहीं चला सका यदि चलानी पड़ती। वहाँ एक पंडुकी एक बड़ी विचित्र चीज है मेरे अपने परिवार में। एक दिन जब मेरी दादी, जब वो यहाँ केंटकी से आई चेरोकी आरक्षण से, वो मर रही थी, एक छोटी स्त्री, और वो थी उसके पास, मैं सोचता हूँ वे इसे स्क्रोफुला या कुछ कहते हैं, वो मर रही थी। और दादाजी ने पलंग के बराबर में घुटने टेके, जबकि मामा, मौसी ब्रेटिक, मौसी हॉली और वे सारे पलंग के चारों ओर घुटने टेके। अंकल चार्ली, छोटा बेटी 4 वर्ष का लड़का, वो बालक, माँ सबसे बड़ी लगभग 12 वर्ष की, और उसने उनके बाल बिस्तर पर बनाए और उसने गाना आरम्भ कर दिया। युगों की चट्टान मेरे लिए फटी, मुझे उसमें छिप जाने दो, जब वो मर रही थी। दादाजी उस समय मसीही नहीं थे। मैंने उन्हें 87 वर्ष की आयु में बपतिस्मा दिया यहाँ नदी के किनारे यीशु मसीह के नाम में, जहाँ प्रभु का दूत प्रकट हुआ था। परंतु जब वो गीत गा रही थी, उसके निर्बल हाथ ऊपर हवा में थे और पंडुकी दरवाजे से अंदर आई, घूमकर पलंग के सिरहाने बैठ गई और बोलने लगी, परमेश्वर ने उसके प्राण को ले लिया। और भाई जैक और भाई गॉर्डन लिंडसे के साथ लंदन इंग्लैंड गया था, और वहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक स्त्री थी। मैं सोचता हूँ उस पुरानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की परपोती या कुछ का वो दावा करती थी, जिसने मुझे बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी। वो नीचे दक्षिणी अफ्रीका में थी, कैंसर से मर रही थी, और उसके पास एक चित्र था, आपने पुस्तक में देखा था। मैंने ऐसा मरणशील मनुष्य अपने जीवन में कभी नहीं देखा। भाई जैक, मैं समझता हूँ उस दिन मेरे साथ थे। हमें एक सेवक के घर पुरोहित आश्रम में गए थे, आराधनालय के पीछे जहाँ वे इसे लाए थे। जबकि अभी हम बाहर ही थे जहाँ जहाज उतरा, उन्होंने हमें परिचर लड़का भेजा। तब वो वहाँ एम्बुलेंस में थी, नीचे दक्षिणी अफ्रीका से उड़ान से आई थी, ये जानते हुए कि मैं उस समय इंग्लैंड आ रहा हूँ। उसे पुरोहित आश्रम में ले गया, इसलिए हम वापस वहाँ उसके लिए प्रार्थना करने वहाँ गए। मैंने बहुत से बीमार लोग देखे हैं, परंतु उसकी बाहें 1 इंच की भी नहीं दिख रही थीं। उसके सिर की हड्डियों के जोड़ आप उन्हें देख सकते थे। उसके हाथ उसके जांग पर 2 इंच से अधिक चौड़ी नहीं, बस हड्डियां। और वो अपने हाथों को नहीं उठा सकती थी, वो इतनी निर्बल थी कि अपने हाथ नहीं उठा सकती थी। और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और मैं उसकी समझ नहीं सका। और जब आखिर मैं उसकी सुन पाया एक नर्स के द्वारा होते हुए, उसने कहा भाई ब्रणम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे मर जाने दे। वो नहीं कर सकती थी, वो जीना नहीं चाहती थी। और मैंने ध्यान दिया कि आंसू उसके मुख की हड्डियों के एक ओर से बह रहे थे, जहाँ से उसे रोने के लिए नमी मिली मैं नहीं जानता। उसकी नसें सूख गई थी और वह दयनीय स्थिति में थी। बीमारों के लिए प्रार्थना करने आ रहा था, मैं उसके मरने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता था, परंतु कुछ ऐसी दिखी कि नहीं मर सकती, वो बस घिसट रही थी। मैंने आपके पास्टर के साथ कमरे में प्रार्थना करने के लिए घुटने टेके, और जब मैंने प्रार्थना करने को घुटने टेके, एक छोटी पंडुकी खिड़की पर आई और बोलने लगी। और जब मैंने प्रार्थना समाप्त की तो मैंने सोचा ये पालतू पंडुकी है वहीं कहीं की। बाहर धुंध थी, इंग्लैंड कैसा है, वहाँ ब्रिटिश टापू है। और इस छोटी पंडुकी ने बोलना बंद किया और उड़ गई। मैं गया और अपने हाथ उस पर रखे और प्रभु के नाम को पुकारा, और वो स्त्री आज बड़ी अच्छी तंदुरुस्त महिला है। पंडुकी के पंखों पर वो स्वयं को भीतर की ओर से साफ रखती है। एक मसीही भी वैसे ही करता है, वो अंदर की ओर से साफ करता है। वो द्वेष नहीं रखता, उसे किसी चीज को पचाने के लिए पित्त की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ये नहीं रखाता, समझे। वो अंदर से बाहर की ओर सफाई करता है। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि ये चिड़िया, मैंने यहाँ बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, परंतु घड़ी आगे बढ़ रही है। ये चिड़िया पुराने नियम में भी बलिदान के लिए प्रयोग में लाई जाती थी, उस छुटकारे के लिए, शुद्धता के लिए। आइए उत्पत्ति 15:9 का एक उल्लेख लें। आइए इस पद पर विचार करें एक क्षण के लिए। अब अब्राहम या परमेश्वर से पूछा वो इसे कैसे करेगा, और परमेश्वर ने अपना वचन अब्राहम को दिया, और वो ये विचित्र रीति से करता है, आरंभ करता है। आइए पहले पद से आरंभ करें, मैं इसमें जल्दी करना पसंद नहीं करता। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। देखिए अब्राहम एक भविष्यद्वक्ता था, इसलिए उसने दर्शन देखे। मत डर अब्राहम, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ, यहोवा निश्चय। देखिए अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, ध्यान दे, बड़ा एल, लॉर्ड गॉड, प्रभु यहोवा, एलोहिम, समझे, प्रभु यहोवा, दर्शन में तू मुझे क्या देगा, मैं तो निसंतान हूँ, और मेरे घर का वारिस एलियाजर दमिश्की होगा। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, उससे प्रतिज्ञा कि आप जानते हैं नहीं। देखिए, तभी अब्राहम असफल हो जाता, परंतु प्रतिज्ञा बिना शर्त की है, बिना शर्त की वाचा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और अब वो 100 वर्ष का था, और उसने उसे बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके, तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, एक मनुष्य बिना संतान का और अब 100 वर्ष का। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के देश ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? अब इसे सुनिए। और यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी, अब 3 पर ध्यान दें, 3 वर्ष की, और 3 वर्ष का एक मेड़ा और एक पंडुकी और कबूतर का एक बच्चा ले। दोनों वही लोग, दोनों वही चीज। देखिए, ये बलिदान में प्रयोग की जाती थी कि वो यीशु की आने वाली परछाई थी, वाचा बांधी गई थी। आप जानते हैं कैसे उसने उन्हें अलग फाड़ा और कैसे ये है। या पुराना समय जब उन्होंने लिया वाचा बांधी, वे लेंगे और सहमति लिखते हैं। एक पशु मारा और उसके मध्य में खड़ा होता है, वाचा को दो में फाड़ा, एक व्यक्ति ने एक भाग लिया, जैसे कि चीनी धोबी किया करते थे। यहाँ चीनी लोग वो अंग्रेजी नहीं लिख सकता था, इसलिए वो उस पर लिखता और कागज को फाड़ता और एक भाग आपको देता। और आपको चीनियों की याद है, धोबियों की, जब वे ये किया करते थे, और आप उनके दोनों सिरों का मिलान करना होता था कि आपके कपड़े मिले। देखिए, आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते थे क्योंकि उसके पास इसका दूसरा भाग होता था। आप अपने नाम की नकल कर सकते थे, परंतु आप कागज को दोबारा नहीं फाड़ सकते थे। देखिए, इसलिए उसके पास इसे तो वही कागज का टुकड़ा होना था। इस प्रकार से वे लोग पुराने समय में किया करते थे, बहुत बहुत पहले पूर्वी दिनों में। वे पशु को मारेंगे और उसके मध्य में खड़े होंगे, बकरी की खाल को अलग अलग फाड़ेंगे और एक एक ने ले लिया, और जब वाचा की पुष्टि हो गई, वे टुकड़ों को एक साथ लाए और वे उसका ठीक ठीक मिलान करते। अब इसमें परमेश्वर क्या दर्शा रहा है, इन बलिदानों में मसीह के विषय में बोल रहा है, यही जो परमेश्वर यीशु को कलवरी पर ले गया और उसको फाड़ दिया और देह को ऊपर स्वर्ग में ले लिया और आत्मा को हम पर नीचे भेजा, कि वही आत्मा जो उस पर था वो आप पर होना चाहिए, कि देह के साथ मेल खाए, कि अंत के समय में दुल्हन हो जाए। समझे, ये ठीक बात है। देखा, अब एक नामधारी नहीं होगा, ये वचन होगा जो वो था। परंतु जैसे वचन को वचन के पास आना चाहिए, जैसे कोशिका मनुष्य में, आप जानते हैं जब आपकी देह बन रही थी कि एक कोशिका मनुष्य और दूसरी कुत्ते की और अगली सुअर की। ओ नहीं नहीं, ये सब मानव कोशिका है। इसी प्रकार से मसीह की देह है सारा परमेश्वर का वचन, ना कि बस एक भाग, इसमें कुछ रिवाज मिला दिए। नहीं, ये सारी मसीह की देह है। अब हम यहाँ ये पाते हैं कि उसने दोनों, एक पंडुकी और एक युवा कबूतर प्रयोग किया, क्योंकि वे एक ही परिवार के हैं। अब आप सदा इसलिए ध्यान दें, मैंने बस कुछ ही पवित्र लेखों का उल्लेख किया है। लेव व्यवस्था 12 और 6वां पद, हम यहाँ पाते हैं कि स्त्री को शुद्ध होने की रीति अनुसार, यदि स्त्री के बालक उत्पन्न होता है तो उसे प्रतीक्षा करनी होती है, यदि ये पुत्र है तो उसे 33 दिन प्रतीक्षा करनी होती है, इसके पहले कि वो भक्त मंडली में पंडुकी के साथ प्रवेश करे शुद्धता के लिए। यदि उसके लड़की होती है तो उसे 96 दिनों तक प्रतीक्षा करनी होती है, इसके पहले कि वो भवन में प्रवेश करे। अब हम यहाँ 6वें पद में पाते हैं, जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वो होम बलि के लिए एक वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पंडुकी का मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले आए। देखिए, वो अभी अंदर नहीं आ सकती क्योंकि अभी उसके दिन पूरे नहीं हुए हैं, परंतु वो ये याजक को द्वार पर दे सकती है अपने बलिदान के लिए। देखिए, या तो पंडुकी या जवान कबूतर, वे दोनों एक ही परिवार के हैं। अब ये छुटकारे के लिए प्रयोग किए गए थे, और पाप के छुटकारे के लिए एक पंडुकी या कोड़ के लिए, जो कि पाप का प्रतिरूप, आप दो पंडुकी लाएं, एक का सिर काटा गया और उल्टा लटकाया गया और उसे दूसरे पर लहू गिरने दिया, और फिर दूसरी पंडुकी स्वतंत्र की गई, और जब पंडुकी उड़ गई, उसने भूमि को अपने साथी के लहू से नहला दिया और लहू परमेश्वर की ओर चिल्लाया, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, क्या आप नहीं देख सकते संगी यीशु मसीह को मरते हुए मारा गया और हम पर छिड़का गया ताकि हम स्वतंत्र होकर चले जाएं, ये चिल्लाते हुए पवित्र 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 प्रभु के लिए। क्या ही सुंदर प्रतीक है, इच्छा हुई कि मेरे पास आवाज होती। अब महान पवित्र आत्मा का प्रतीक, जैसे कि अभी हमने प्रकाशित वाक्य 3:16 में पढ़ा, परमेश्वर इस पंडुकी को चिन्ह के लिए प्रयोग किया था। नूह को एक चिन्ह दिया गया था, जैसा कि इस विषय में अभी अभी गाया, परमेश्वर अप्रसन्न था और उसके क्रोध के सामने कुछ भी टिकने वाला नहीं था, क्योंकि उसने कहा, जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और नूह ने परमेश्वर का अनुग्रह पाया और बनावट के अनुसार उसने नाव को बनाया, बल्कि निर्देशन के अनुसार जो उसने उसे दिया था, और वो तैर गया था। मैं उसकी कल्पना कर सकता हूँ उन दिनों में क्या हुआ जब उन्होंने कहा, ये बूढ़ा मनुष्य वहाँ पहाड़ पर एक सनकी बूढ़ा नाव बना रहा है, कह रहा है कि वर्षा होने जा रही है, और कभी वर्षा नहीं हुई थी, परंतु ये नूह ने कहा जो भी है वर्षा होने जा रही है, और फिर मैं जानता हूँ कि वो दिन वो अंदर गया, मैं क्या सोचता हूँ, नहीं सोच सकता कि वो क्या ही दिन था। मैं विश्वास करता हूँ मई का 17वां दिन नूह ने नाव में प्रवेश किया और परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया और बादल आने लगे, वर्षा होने लगी, नालियां भरने लगी और गहरे सोते फूट पड़े, सोतों ने अपना जल उगलना आरंभ कर दिया। पुरानी नाव वहीं वैसे ही खड़ी रही। कुछ समय बाद उसके चारों ओर पर्याप्त भर गया तो वो ऊपर और ऊपर उठने लगी। लोगों ने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाए, परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। नूह दरवाजा नहीं खोल सकता था, परमेश्वर ने इसे बंद किया, केवल परमेश्वर ही इसे खोल सकता था। ऐसे ही हमारी नाव है यीशु मसीह। परमेश्वर ने हमारे लिए कलवरी पर द्वार खोला, वो ही इसे निश्चय बंद करेगा जैसे उसने इसे खोला। ये और तैरती गई, संभव है पृथ्वी के तल से मील भर, जब ये पृथ्वी मार्ग से झुक गई अपने निश्चित परिक्रमा से, और ये घूमती चली गई और टुकड़े और पेड़ और पहाड़ों के ऊपर और आदि आदि 40 दिन और रात डूबती रही। और जब हवाएं रुकने लगी, परमेश्वर का क्रोध भयानक है, उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है, और उसका क्रोध भी दिव्य है, वैसे ही दिव्य जैसा उसका प्रेम है। उसे न्याय करना ही है क्योंकि वो न्यायी है, वो व्यवस्था का देने वाला और बिना दंड की व्यवस्था व्यवस्था नहीं, इसलिए व्यवस्था में दंड होना ही चाहिए। और आप परमेश्वर की व्यवस्था के अपराधी यही जब आप दंड भोगते हैं। अब ध्यान देते हैं, वहाँ नूह के तैरने के पश्चात कोई संदेह नहीं, चारों ओर जल की आवाज और हिलते हुए बीमार अनुभव करना और परमेश्वर का क्रोध दबाता कुचलता और चिल्लाता और आदि आदि। तब ये शांत होने लगा, कुछ नहीं हुआ, दिन बीतते गए, कुछ नहीं हुआ। संभवतः पशुओं के लिए चारा खत्म हो रहा हो, कुछ नहीं हुआ। इसलिए उसने सोचा, आश्चर्य है, मैं बाहर नहीं देख सकता। नाव ऐसी बनी थी, जब एक बार आप अंदर आ गए तो वहाँ केवल एक खिड़की है और ये ठीक ऊपर, आप दाएं बाएं नहीं देख सकते, आप कहीं और नहीं देख सकते, सीधा ऊपर। और ऐसे ही वो नाव यीशु मसीह है, आप अगले व्यक्ति को नहीं देख सकते, आप सिवाय मसीह के कुछ नहीं देख सकते जब आप नाव में हैं, क्योंकि केवल एक ही द्वार है और वो ही द्वार है जिसके विषय में हम बात करते हैं इस प्रातः। आपको ऊपर ही देखते रहना है, क्योंकि वो जो हल पर हाथ रख के और पीछे मुड़कर देखता है वो हल जोतने के योग्य नहीं। अब जैसे इस नाव में, और वो उजियाला देख सकता था और संभवतः सूर्य का उजियाला, परंतु उसे आश्चर्य था कि वो कहाँ है। नाव अब भी तैर रही थी, वो दीवारों पर लहरें सुन सकता था, परंतु वो जान गया कि बहुत दिन हो गए, निश्चय ही अब जल नीचे उतर रहा है। इसलिए वो गया और एक धोखेबाज चिड़िया को लिया, विश्वासघाती, और उसने उसे परखा और उसे बाहर भेज दिया। वो कौआ था और वो कौआ कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ आनंदित था परमेश्वर के नाव के बाहर। वो एक शव पर से दूसरे पर गया, मरुओं को खा रहा था, वे शव जो तैर रहे थे पानी पर, और वो पूरी तरह संतुष्ट था। इसलिए कुछ दिनों के बाद उसने फिर यत्न किया, क्योंकि वो जान गया, उसने नहीं चाहा कि परमेश्वर के क्रोध में बाहर निकलकर कदम रखे। इसलिए उसने पंडुकी को छोड़ा, और ये पंडुकी स्वभाव में भिन्न थी उससे, ये गिद्ध नहीं थी ना ही चमरगिद्ध, ये तो केवल शुद्ध साफ चीजें खा सकती थी। और ये इतनी संतुष्ट थी क्योंकि इसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि अपने पैरों को टिकाए, और ये वापस नाव पर आ गई। नूह ने कहा, अच्छा, बाढ़ अभी बाकी है। तब उसने कुछ और दिन प्रतीक्षा की और उसने उसे फिर उड़ा दिया, अपनी प्रार्थना के समान। ओ परमेश्वर, क्या आपका क्रोध शांत हुआ? क्या आपका कोप समाप्त हुआ प्रभु? क्या ये हो गया? और उसने कहा, अब यदि मैं उसे इस समय बाहर भेजूं, वो बाहर यदि बाढ़ उतर गई होगी तो रुक जाएगी। परंतु उसने प्रार्थना के साथ उसे बाहर भेजा, और फिर जब वो बाहर चली गई और वो परमेश्वर के द्वारा अगुवाई में रही, उसने पेड़ पर से पवित्र पत्ती तोड़ी और वापस आकर फिर खिड़की पर बैठ गई। परमेश्वर ने पंडुकी को चिन्ह के लिए प्रयोग किया और वो ये कहती हुई वापस आई, बाढ़ खत्म हो गई। और तब परमेश्वर ने द्वार खोला और वे बाहर गए। ये उत्पत्ति 8:8 है। मती 3:16 में भी उपयोग किया, फिर से जब परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर था और वहाँ कोई मार्ग न था, सबसे अंधेरी रात्रि, बीच रात्रि, कलीसियाओं ने बातों को इतना तोड़ मरोड़ दिया, यहाँ तक कि कोई मार्ग न था कि बाहर आ सके, और वहाँ झूठे शिक्षक और सब प्रकार की चीजें ऊपर आ रही थीं, सब प्रकार के धंधे बढ़ रहे थे। परंतु परमेश्वर ने फिर से पंडुकी का प्रयोग किया, इसने उसे प्रसन्न किया, उसके पुत्र यीशु ने उसे इतना अच्छा प्रसन्न किया कि उसने उसे प्रमाणित किया। अब वे विश्वास ना कर सके कि ये बालक जो वहाँ चरनी में जन्मा था, इसके पहले कि इसके पिता और माता का विवाह होने को था, वे कल्पना ना कर सके कि परमेश्वर इस प्रकार की किसी चीज का प्रयोग करेगा। इसलिए उसे संसार को प्रमाणित करना था। और उस दिन नदी पर जब वो स्वयं को परमेश्वर की श्रेष्ठ कृति प्रमाणित करने को गया, जिसके विषय में मैंने आज प्रातः बातें की, जब वो जल में उतरने के लिए आज्ञाकारी रहा। अब यदि आप ध्यान दें तो एक महान पाठ यहाँ है। यूहन्ना उस समय का पृथ्वी पर महानतम पुरुष था। यीशु ने कहा, स्त्री से जन्मे हुए मनुष्यों में से उस समय उससे कोई भी महान नहीं जैसा वो, और वो एक भविष्यद्वक्ता था। आप ये विश्वास करते हैं? अब स्मरण रखें, यदि परमेश्वर का वचन राष्ट्र में किसी के पास आएगा तो वो भविष्यद्वक्ता होगा। परमेश्वर का सदा से यही मार्ग है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु देह में प्रकट वचन था? इसलिए केवल एक मार्ग है, वो परिचय कराने के लिए आ सकता था, पुरोहितों के द्वारा नहीं। वो ऊपर नहीं गया और कहा कि कैफा, क्या तुम मेरा परिचय कराओगे? यदि उसने किया होता तो वो वही गलती करता जो दाऊद ने हमारे उस दिन के पाठ में की थी। देखा, यदि वो कलीसिया में जाकर और कहता, क्या तुम मेरा परिचय कराओगे? थोड़ा ध्यान दें, यहाँ तक कि जब वो जन्मा, जब उसने जन्म लिया, उसने कलीसिया की छाया में जन्म लिया, और वे संभवतः घंटा बजाते और सब कुछ, परंतु ये चरवाहे थे जिन्होंने उसे पहचाना, और ज्योतिषी, समझे? और अब वो यहाँ पर है अपनी सेवकाई के लिए तैयार। और यदि वो वचन है परमेश्वर की महान योजना के अनुसार, केवल वचन, प्रभु कुछ नहीं करता जब तक कि वो उसे अपने दासों भविष्यद्वक्ताओं पे प्रकट नहीं करता। ये सदा उसका आदर्श रहा है, करना ही है। जब मोहरे खोली गई थी, जब कुछ भी पृथ्वी पर कोई विशेष घटना घटती है, परमेश्वर इसे अपने भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट करता है। और यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था क्योंकि वो भविष्यवाणी कर रहा था कि वो आएगा। वहाँ नीचे पहाड़ की एक और एक दिन जब विचार विमर्श चल रहा था, फरीसियों का एक झुंड आसपास खड़ा था और उन्होंने कहा, क्या मुझे बताने का तुम्हारा ये अर्थ है कि तुम स्वयं को भविष्यद्वक्ता कहते हो और वहाँ उस कीचड़ में खड़े हो? कलीसिया में नहीं, क्योंकि वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे। कीचड़ में खड़ा है और मुझे बता रहा है कि घड़ी आ रही है जबकि महान यहोवा, जिसने ये बलिदान ठहराए हैं, जब महान यहोवा जिसने ये मंदिर बनाया जो इसमें अग्नि स्तंभ के समान आया, वो दिन आएगा जब प्रतिदिन का बलिदान समाप्त हो जाएगा। उसने कहा, एक मनुष्य आएगा, वो तुम्हारे बीच में यहीं कहीं है, और वो पाप को ले जाएगा। प्रचारकों ने उससे घृणा की। यूहन्ना ने ऊपर की ओर देखा। अब वो क्या है? एक भविष्यद्वक्ता। और यहाँ पर वचन है, यहाँ वचन आ रहा है, सीधा भविष्यद्वक्ता के पास आता है, सीधा जल पर। यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को ले जाता है, वो वहाँ पर है, यही है वो। यीशु ने वचन नहीं बोला, सीधा चलता हुआ जल पर गया, और मैं वहाँ देख सकता हूँ पानी में खड़ा है। एक नाटक पर विचार करें, दो महानतम जो कभी संसार में उतरे, परमेश्वर, वचन और उसका भविष्यद्वक्ता। ध्यान दें, वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है अनुग्रह के इस विधान में, जल में। ओ, मैंने सोचा आप समझ जाएंगे। जल में। वचन का पहला प्रकाशन जल में था। अब आप देखिए दुल्हन कहाँ से आरंभ हुई, सांझ के उजियाले के संदेश में, जल में। वचन, सच्चा वचन मत्सार से मेल नहीं खाता, परंतु जल में भविष्यद्वक्ता के पास आता है जल के द्वारा। ध्यान दें, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वचन की आंखें और भविष्यद्वक्ता की आंखें जल में मिल रही हैं? ओह, ये मेरे लिए बहुत अधिक है। वहाँ भविष्यद्वक्ता खड़ा है, वहाँ वचन खड़ा है, एक दूसरे की आंखों में आंख देख रहे हैं। और भविष्यद्वक्ता ने कहा, मुझे आवश्यकता है कि तुझसे बपतिस्मा लूं, तू मेरे पास क्यों आया है? और वचन ने कहा, इसे सत्य ही होना है। अब मैं यहाँ एक नाटक दूं, यूहन्ना तू एक भविष्यद्वक्ता है और तू वचन को जानता है, समझे? तू मुझे पहचानता है, तू जानता है कि मैं कौन हूँ। मुझे आवश्यकता है कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं, यूहन्ना ने कहा। यीशु ने कहा, ऐसा ही होने दे, ये बिल्कुल ठीक है, तुझे आवश्यकता है कि मुझसे बपतिस्मा ले। परंतु यूहन्ना, याद रख, भविष्यद्वक्ता होने के नाते हमारे लिए अवश्य है, या हमारे लिए है, एक वचन और भविष्यद्वक्ता, कि हम हर वचन को पूरा करें। यूहन्ना के लिए यहाँ अब एक प्रकाशन है। यूहन्ना, तू जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक बलिदान हूँ, और परमेश्वर के वचन के अनुसार बलिदान को धोया जाना है, इसके पहले कि उसे बलिदान के लिए प्रस्तुत किया जाए। क्या ये ठीक बात है? वचन, मेमना धोया गया और फिर बलिदान के लिए प्रस्तुत किया गया, और मैं वो मेमना हूँ, और मुझे धोया जाना चाहिए इसके पहले कि मैं संसार के सामने प्रस्तुत हो सकूं एक बलिदान के लिए। ऐसा ही होने दे यूहन्ना, अब ये हमारे लिए इस प्रकार हो गया जैसे वचन और भविष्यद्वक्ता एक साथ, वहाँ गलती नहीं हो सकती। अब प्रत्येक इन बातों में, अब देखिए, यदि ये इसी प्रकार तय नहीं है, यूहन्ना हम में से किसी एक के समान होगा, इसलिए वे कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि प्रभु तू कौन है। उसने कहा, एक मिनट रुको, मैं वचन हूँ। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर वचन से। हवा ने एक छोड़ दिया, परंतु आपको हर वचन लेना होगा, और मैं वो बलिदान हूँ, और इसके पहले मुझे प्रस्तुत किया जाए, मुझे धुलना ही है। परंतु तू क्या कहता है यूहन्ना? सही है, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता होने के नाते जान रहा है, वचन को पूरा ही होना था, उसने वो होने दिया और उसे बपतिस्मा दिया। और जब वो पानी से निकलकर बाहर आया, तो वहाँ पंडुकी के पंखों पर स्वर्ग से संदेश आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसने अनुग्रह में छुटकारे का संदेश पंडुकी के पंखों पर भेजा, स्वर्ग से उड़ती हुई नीचे आई, पृथ्वी पर शांति, मनुष्यों की ओर भली मनसा। उस समय बलिदान तैयार था, पाला गया, खिलाया गया, उसकी सेविकाई तैयार थी, एक वचन जो समस्त संसार को छुड़ाएगा, ये पूरा हो गया। पंडुकी को बाइबल में शांति के प्रतीक के समान प्रयोग किया गया है, और ये राष्ट्रों के द्वारा भी शांति के प्रतीक उसमें प्रयोग किया गया है। हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उकाब के द्वारा हुआ, और दूसरे पक्षी दूसरे राष्ट्रों के, रोम का उकाब है, जर्मन के पास उकाब है, आकाश के बहुत से बड़े बड़े पक्षी हैं, परंतु इन सब में पंडुकी सारे राष्ट्रों में शांति का प्रतीक है, ये विश्वव्यापी चीज है। जैसा कि एक रात्रि भाई ग्रीन ने कहा, भाई पेरी ग्रीन ने कहा, आत्म समर्पण का चिन्ह अपने हाथों को उठाना है, किसी भी राष्ट्र में अपने हाथों को उठाना ये आत्मसमर्पण है। उसने कहा, जब आप गाते हैं, अपने हाथ उठाते हैं, आप समर्पित करते हैं, और पंडुकी हर राष्ट्र में शांति का चिन्ह है। ये क्यों किया गया? अपनी सौम्यता के कारण, अपनी निर्दोषता के कारण, यही कारण है कि ये शांति का चिन्ह है। पंडुकी के विषय में दूसरी बात, ये घरेलू चिड़िया है, ये घर में रहना पसंद करती है। और दूसरी बात यह है, यह अपने साथी के साथ सदा ईमानदार है। नर और मादा पंडुकी एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते। मादा अपनी ऋतु में अपने नर को खोज लेती है। देखिए, ये परमेश्वर की महान रचना में प्रशंसात्मक है। यही कारण है उसने हवा को उप उत्पाद बनाया, समझे। यदि ये दूसरी मादाओं के समान बनाई जाती, जब इसके मिलने का समय आता वो अपना साथी ढूंढ लेती, परंतु वो किसी भी समय सकती है, समझे। और यही विधि है, यही जो है। मैं बस हम इसमें नहीं जाना चाहते, क्योंकि मैंने इसे विवाह और तलाक में लिया है और आदि आदि और कैसे ये, परंतु फिर भी ये सम्मानजनक है और उस गुण को ले आई जो आप जानते हैं कि उस रात्रि मैंने इस प्रकार कैसे प्रचार किया था। ठीक है, ध्यान दें, उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, परंतु पंडुकी सदा अपने साथी के प्रति ईमानदार है, सदा उसे कभी नहीं छोड़ती। क्या ये कहने के लिए मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूं? एक सच्ची दुल्हन मादा पंडुकी सदा अपने नर के प्रति भी ईमानदार है। ये किसी धर्म सिद्धांत को नहीं मिलाएगी, किसी नामधारी शिक्षा को नहीं, संसार की किसी चीज को नहीं। ये अपने साथी के प्रति ईमानदार है, वचन के लिए सदा ईमानदार। और इस घर प्रेमी आचरण के द्वारा, अपने घर प्रेम आचरण के द्वारा, ये डाक कबूतर के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया, क्योंकि ये घर से प्रेम करता है। आप इसे कहीं से भी छोड़ दें, ये सदा घर को वापस जाएगा, ये घर वापस जाएगा। हम इस पर थोड़ी देर के लिए जोर देना चाहेंगे और आप मसीहो समझ जाएंगे कि मेरा क्या अर्थ है। ये सदा अपने घर का वापसी का रास्ता ढूंढ लेता है, इसलिए इसे कबूतर डाक के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इसे युद्ध के समय प्रयोग किया जाता था, वे अब भी उसका प्रयोग करते हैं, डाकिया कबूतर, संदेश ले जाने को। इसलिए तब आप देखते हैं ये पंडुकी को परमेश्वर और मनुष्य के द्वारा संदेशवाहक बनाया गया। एक पंडुकी, एक संदेशवाहक। ये नू के लिए संदेशवाहक, नू को ये बताने के लिए कि फिर से शांति है। ये परमेश्वर के द्वारा प्रयोग में लाई गई कि प्रमाणित करे कि ये उसका पुत्र था। बलिदान पृथ्वी पर शांति लाने और मनुष्य के लिए शुभकामना। इसे संदेशवाहक के समान प्रयोग किया गया। ठीक अभी मेरे मस्तिष्क में एक छोटी सी कहानी है जिसे मैंने कभी पुस्तक में से पढ़ा था। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये निश्चित है, ये पहले विश्व युद्ध के समाप्ति की ओर, मैं इस विषय में पक्का नहीं हूँ कि आप इसे देखने में चूक जाएं तो मैं गलत हूँ, या तो मैंने पुस्तक में पढ़ा, ये बहुत वर्षों पहले था, परंतु ये निश्चय ही थी, एक नाटकीय ढंग में घटित हुआ। ये अमेरिकन सिपाही जर्मनियों के मशीन गन के फायर के द्वारा घेर लिए गए और वे एक प्रकार से गड्ढे में थे। आप सिपाहियों, मैं समझता हूँ कैसे वे कहीं पर टोल ले रहे थे और वे घिर गए थे और उनके पास थोड़ा सा असला बचा था और जर्मनी बड़ी संख्या में बढ़ रहे थे, हर ओर बढ़ रहे थे, और वे जान गए जब तक उन्हें कुछ और ताकत ना मिले, कुछ सहायता, कि वे सब जल्दी ही मर जाएंगे। उन्हें होना ही था। जर्मनी सीधे सीधे पहाड़ से आ रहे थे, उनकी गर्दनों को देख रहे थे, सीधे उन पर इस प्रकार से आ पड़ेंगे। और ऐसा हुआ कि उनमें से एक को स्मरण आया कि उसके पास एक छोटा सा एक कबूतर था, इसलिए वो जानता था कि ये छोटा कबूतर, इसलिए वो जान गया कि ये कबूतर यदि ये संदेश को मुख्यालय में ले जा सके जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, और इसलिए वे बैठे और एक टिप्पणी लिखी। हम एक निश्चित स्थान में फंसे हुए हैं, किसी निश्चित स्थान में, हमारा असला समाप्त हो गया है, कुछ ही घंटों में हमें समर्पण करना होगा या हमारा संहार हो जाएगा। और उन्होंने ये लगा दिया या उस छोटे कबूतर के पैर में बांध दिया और उसे छोड़ दिया। अब ये घर प्रेमी चिड़िया है, इसलिए वो क्या करता है, वो वापस जाता है कि अपने साथी को मिले। वो उसके लिए चिंतित थी, वो घर वापस आ रहा होगा, और जैसे ही वो ऊपर गया, जर्मनियों ने देख लिया कि क्या हुआ, इसलिए जो चीज उन्होंने की, उन्होंने पंडुकी पर गोलियां दागनी शुरू कर दी और उनमें से एक 0.3 ताकत की गोली उसे लगी मशीन गन से, या गोली इसने इसका पैर तोड़ दिया, एक ने उसकी पीठ को तोड़ दिया, उसकी छाती आर पार कुचल गई, उसका एक पंख घायल हो गया, आखिरी हिस्सा घायल हुआ और तिरछा उड़ा, परंतु वो ऊंचा होता गया और अंत में उसने कर लिया। अपाहिज, घायल, टूटा हुआ, कुचला हुआ, परंतु वो संदेश के साथ उस पड़ाव में जा गिरा। वो एक महान पंडुकी थी, परंतु ओ भाई, यशाया 53 हमें एक के विषय में बताता है, घर से नीचे उतर आया और जो सब जो अच्छा था, और वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। बीमारी, अंधविश्वास और प्रेत आत्माओं ने हमें घेर लिया था, कोई भी निकलने का मार्ग नहीं था। कलीसिया भटक गई थी, वे नामधारी की बातों में चले गए थे और फरीसी सदूकी भांडे बर्तन धो रहे थे और परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित हो गया था। परंतु ये छोटी पंडुकी नीचे उतरी और केवल एक ही चीज थी जो हो सकती थी कि एक छुड़ाने वाला हो। परंतु घायल, टूटा, कूटा, मारा हुआ होते हुए, परंतु वो घर वापस जाना जानता था, इसलिए कैलवरी की क्रूस से जहां उन्होंने उसे कुचला, मारा, पीटा, उसे घायल किया, जैसे कि भेड़ियों का झुंड उस पर टूट पड़ा, उसने कैलवरी से अपनी उड़ान भरी और स्वर्ग के द्वार पर जा उतरा, कहा, ये पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, वे स्वतंत्र हैं। अब बीमारी अच्छी हो सकती है, पापी बचाए जा सकते हैं, बंधुए स्वतंत्र हो सकते हैं। यद्यपि वो कुचला और घायल किया गया, वहाँ एक महान संग्राम, जब हर चीज उसके विरोध में थी, यहाँ तक कि कवि चिल्ला उठा, बीच से समर्पित चट्टान और गहराते आकाश, मेरे बचाने वाले ने अपना सर झुकाया और मर गया। परंतु खुलते हुए पर्दे ने मार्ग प्रकट किया, स्वर्ग का आनंद और अनंत दिन। मैं अपने सारे जीवन तंत्रिका रोगी, एक छोटे लड़के के समान किसी चीज ने मुझ पर प्रहार किया जिसने मुझे डरा दिया। लगभग हर 7 में ये मुझे होगा। भाई जैक को ये याद होगा, जब ये पहली बार आरंभ हुआ, कार्य क्षेत्र से साल भर बाद लौटा, बस कुछ घटित हुआ। मुझे स्मरण है वो दिन, जो जुनीता हेमफिल, मैं सोचता हूँ उसका नाम जेनीता कैली, उसने भाई कैली से अपने पति के मरने के बाद विवाह किया। एना जीन, मेरे पास उनकी तस्वीरें आदि हैं, वे ऐसे हैं, और वो और वे दो लड़कियां और बहन मूर, ये तीनों, उन्होंने वो गीत गाया, मैं कभी नहीं भूलता, सूर्य अस्त से आगे देख रहा हूँ। भाई जैक, आपको याद है, मैं समझता हूँ, फ्लोरिडा से वापस आते हुए, कितनी अच्छी लड़कियां। मुझे याद है उस प्रातः, छोटा पेंटिकोस्टल झुंड राष्ट्र के उत्तरी भाग से मिशिगन में कहीं, वे लड़कियां वहां खड़ी थीं, जब भाई हूपर, मैंने उसे यहां उस रात्रि देखा, मैं हो सकता है कि वो यहां कहीं ना हो। भाई एड हूपर, क्या आप यहां हैं? भाई एड, मैं नहीं सोचता वो उस रात्रि यहां बैठा हुआ था। कोई नहीं, आप में से बहुत से उसे जानते हैं। वो और मैं और भाई हुली, हम जा रहे थे और वे लड़कियां वहां कोने में खड़े होकर गा रही थीं। उनमें से प्रत्येक ने हमको अपने सिर में से पीला गुलाब निकाल कर दिया। यही जहां पागल चंगे हुए थे, वहां महान चीजें घटित हुई। जितना आनंदित हो सकता हूं, सड़क पर आ रहा था, जितना मैं हो सकता हूं, अचानक से इसका मुझ पर प्रहार हुआ। एक वर्ष पहले मैंने कार्य क्षेत्र में फिर प्रवेश किया, बस मुझे मार डाला। जब से छोटा लड़का था, मैंने सदा कहा, मुझे नहीं मालूम कि दर्शन क्या था। मैं एक छोटा लड़का, मैंने सदा कहा, यदि मैं केवल उनमें से एक आत्म विस्मृति यानी ट्रांस में जाऊं और वो देखूं कि मैं चंगा हो जाऊंगा। उस समय मैंने सदा चाहा कि मैं मायो जाऊं और मालूम करूं कि क्या गड़बड़ थी। वहाँ डॉक्टर पर, मेरा पेट कड़वा हो जाता और ओ भाई जैक मूर ने मेरी सहायता की। घर के आसपास मैं घर के चारों ओर घूमा और गरम चिकना पानी सा मेरे मुंह से निकल रहा था और प्रचार मंच तक गया और लोगों के लिए प्रार्थना की। ये दुगना बुरा था और चंगा हो जाए। मुझे उन पर हाथ, उस मनुष्य पर हाथ रखने थे जिसके मुंह में कैंसर था और कैंसर ने उसके चेहरे को छोड़ दिया वहाँ खड़े हुए, और मैं इतना बीमार था कि खड़ा नहीं रह सका। और आप नहीं जानते मैं कैसा परेशान था, बस दिमागी उत्पीड़ना। मेरे सारे जीवन ये हर 7 वर्षों में आता, यही जहाँ मैं अब हूँ, 7-8। इसलिए मैं बहुत ही कष्ट में था। मैं रोया, मैंने मांगा, मैंने विनती की। और मुझे स्मरण है जब अंत में मैंने सोचा मेरे पास पर्याप्त पैसा है कि मायो जाकर जांच करवाऊं। उन्होंने कहा वे ढूंढ लेंगे कि आपकी क्या समस्या है। पत्नी और मैं और बेकी वहाँ, सारा छोटी ही थी। मैंने अपनी चंगाई की सेवा में कदम रखा ही था और हम मायो को चल दिए। मैं चिकित्सालय से निकला और उस रात्रि से पहले मैं मालूम कर लूंगा। और अगली प्रातः मेरा अंतिम था। मैं उठा और पलंग पर बैठे हुए चारों ओर देख रहा था और मैंने अपने सामने देखा और वहाँ एक छोटा लड़का था, मेरे जैसा दिख रहा था, लगभग 7 वर्ष का। उसकी ओर देखा और वो मैं था, और वो एक पुराने ठूंठ से वृक्ष के पास खड़ा था। और उस पेड़ पर, और आप में से कोई भी गिलहरी का शिकारी जानता है, आप पेड़ पर किसी डंडी को ऊपर नीचे रगड़ें तो ये गिलहरी को डरा देता है और उसे खोखले में से बाहर निकाल देता है। और मैं वहाँ देख रहा था कि जहाँ गिलहरी थी, और मैंने सोचा कि ये गिलहरी किस प्रकार की है, और मैंने इसे रगड़ा, और जब मैंने किया मैंने देखा कि ये मैं लगभग 38 वर्ष का था, छोटा लड़का चला गया था। इसलिए मैंने उस डाली को रगड़ा और उस खोखले लट्ठे में से गहरे रंग की लगभग इतनी बड़ी काली गिलहरी निकल कर आई और ऐसा लगा कि उसमें से हल्का सा करंट निकल रहा है। छोटी गोल गोल आंखें, धूर्त सी दिखने वाली चीज जो मैंने कभी देखी, और बजाय गिलहरी के वो कथ्यान्याल अधिक लग रहा था। और सीधे मेरी ओर देखा और मैंने कहने के लिए अपना मुंह खोला, भाई। और जब मैंने किया वो सीधे मेरे मुंह में चला गया और मेरे पेट में चला गया और मुझे दर्द से तोड़ दिया। और जैसे ही मैं दर्शन से बाहर आया, अपने हाथ उठाए देख रहा था, मैं चिल्लाता गया, ओ परमेश्वर दया कर, ये मुझे मार रहा है। और मैंने कमरे में एक आवाज को कहते सुना, स्मरण रख, ये केवल 6 इंच लंबी है। और कितनों ने ये कहानी सुनी है, मैंने ये आपको बहुत बार सुनाई है जो आराधनालय के आसपास हैं। अच्छा, फिर आगे और आगे वैसे ही कष्ट उठा रहा हूँ। अगले दिन मायो ब्रदर्स ने मेरी जांच की और कहा आपके पिता एक आयरिश व्यक्ति थे, उसने पी। आपकी माँ आधी रेड इंडियन होने के नाते ये आपको लगभग आधा वंश बनाता है, इसलिए आप होंगे, आप एक अधीर टूटे हुए जब तक कि आप इससे कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। कहा वैसे आप स्वस्थ हैं, परंतु ये कुछ प्राण में है जिसे मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता। कहा आप होंगे, कहा जब एक मनुष्य मरता है वो अपनी शव परीक्षा नहीं कर सकता क्योंकि उसका प्राण चला गया। उसने कहा आप इस पर कभी भी काबू नहीं पा सकते। और उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पुराने डॉक्टर ने कहा मेरे पिता को ये था, वो लगभग 85-90 वर्ष के होकर मरे, कुछ इसी के साथ, उसने कहा। एक या दो ही महीने पहले वो मरे थे, मैंने उनकी जांच की, उसके सारे जीवन भर रहा, उनको ये दौरे आते थे। कुछ लोग, कहा उन्हें होता है, वे बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, ये उसी प्रकार का है, ये आपको मार देगा। उसने कहा दूसरी प्रकार का जो स्त्रियों को रजनोवृत्ति में होता है, वे चिल्लाती हैं, उनको एक प्रकार से तोड़ने वाला अनुभव होता है। कहा पुराने समय के लोग इसे उदासी कहा करते थे, ये उन्हें नहीं छोड़ेगा। कहा जब ये आप पर प्रहार करता है आपका पेट कड़वा हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा लेकिन श्रीमान मैं कुछ नहीं करता, मैंने कहा मैं खुश हूँ। कहा ये ठीक है, ये मनुष्य की पकड़ से बाहर है। कहा ये आपको हमेशा होगा। ओ कितनी निराशाजनक चीज है, परंतु वचन इस पर मैं सोचता हूँ, याद रहे ये केवल 6 इंच लंबा है। ये मेरे साथ लग गया, जैसे कि मेरी पत्नी पीछे बैठी है आपको बता सकती है। साल दर साल मैंने इसके विषय में सोचा। और फिर इस आखिरी बार विदेश जाते हुए मैं था, इसके पहले मैं घर वापस आया और मैं गिलहरी के शिकार को यात्रा में था। मैं बैंकवुड के साथ कार से बाहर आया, जो आज रात्रि इसे सुन रहे हैं, और मैंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा लगा मेरा हृदय मेरे अंदर से बाहर आ जाएगा। और मैंने डॉक्टर सैम अदेर से पूछा, मैंने कहा ये क्या करता है। उसने कहा अगली बार आपको होता है तो हृदय की जाँच कराना। मैंने कहा ठीक है। ये अगले वर्ष फिर से हुआ और जाकर हृदय की जाँच करवाई। उसने कहा आपके हृदय में कोई गड़बड़ नहीं है, कहा आप बस अधीर हैं। तब ये आना शुरू हो गया। दूसरे डॉक्टर ने मुझसे कहा, मेरा एक अच्छा मित्र है, कहा ये आपका हृदय है लड़के, कहा अच्छा है कि तुम ध्यान रखो। ये वो वर्ष था कि मैंने भाई मूर को बुलाया और उनके पास कोई और या जो मेरे बदले में बोलता, जब मैं भाई फ्रेड के संग मेड़े के शिकार पर गया। मैं वैसे ही पहाड़ पर गया जैसे जब मैं 16 वर्ष का था, एक के बाद दूसरा मील। दौड़ने ने मुझे कभी भी जरा सा भी परेशान नहीं किया, समझे। मैंने वापस आकर और सैम को बताया, उसने कहा कुछ गड़बड़ है, ध्यान रखो। तब मैंने एक दर्शन देखा कि एक बूढ़ा डॉक्टर के साथ खड़ा है, पुराने तरह का डॉक्टर, अपने हाथ में आला लिए हुए। उसने कहा, एक दिन वो मेरे सामने खड़ा था, उसने कहा उन्हें आपको ये मत बताने दो कि ये तुम्हारा हृदय है, ये तुम्हारा पेट है। इसलिए मैंने सोचा ठीक है, मैं इसी बात को लूंगा क्योंकि ये दर्शन था। आगे बढ़ो, मैं अफ्रीका के लिए तैयार हो गया और कुछ टीके लगवाए। मुझे अफ्रीका जाने से पहले बहुत सारे टीके लगवाने थे, ये नियम है। जब मैं वो टीके लगवा रहा था, उसने कहा क्यों, मैं आपके साथ एक भी गड़बड़ नहीं पा सकता। कहा आपका हीमोग्लोबिन, आपका खून 96 है, ये 96 है। कहा यदि आप 16 वर्ष के होते तो ये इससे अधिक अच्छा नहीं होता। कहा पर्याप्त मजबूत है कि आप 100 वर्ष जी सकते हैं, फेफड़े हर चीज। कहा आप ठीक हैं, कोई मधुमेह कुछ नहीं। मैंने कहा धन्यवाद। इसलिए मेरा शारीरिक परीक्षण हुआ और अपने स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र बोर्ड के पास ले गया। इसलिए उसने कहा आप इस विषय में कुछ जानते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, पेट में सारे समय तेज जलन है। उसने कहा अच्छा, मैं आपको बताऊंगा, उसने कहा। मैंने कहा मेरा परीक्षण हो चुका है, मैं मायो ब्रदर्स के यहाँ था और ये सब जगह। उसने कहा एक मिनट रुको, उसने कहा कभी कभी आंत का घाव इतना छोटा होता है कि बेरियम मील में भी नहीं दर्शाएगा, और कभी कभी ये इतना बड़ा होता है कि ये दर्शाएगा, क्योंकि एक्सरे एक परछाई है और छोटा मोटा घाव आप इसे नहीं देख सकते, ये उस पर नहीं लगेगा। कुल मिलाकर छोटा मोटा आंत का घाव ये कर सकता है। उसने कहा मैं जानता हूँ, यहाँ एक बूढ़ा डॉक्टर, उसके पास एक यंत्र है, अब उनके पास है, वे आपको थोड़े से सोडियम पेंथोनॉल के साथ सुला सकते हैं, आपके गले में नली डालेंगे और सही में वे आपके पेट में झांकेंगे और देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। कहा वो आपके जैसे लोग हैं, वो मसीही हैं। कहा आप क्यों नहीं उनसे मिलते। मैंने उसका नाम लिया, डॉक्टर रेवनवर्थ। इसलिए जब मैं वापस आया, मैं उस बूढ़े डॉक्टर से मिलने गया और वो एक अच्छा बूढ़ा पूर्व इंडीज से डच था, मिशनरियों के बड़े भाग से, और उसने मेरे विषय में सुना था और मेरी पुस्तक पढ़ी थी। और ओ, उसने मुझसे हाथ मिलाया, उसने कहा भाई ब्रणम, मुझे आपके लिए ये करने में प्रसन्नता होगी। उसने कहा मैं बताता हूँ कि क्या करना है, अगले सप्ताह आप यहाँ अस्पताल में आ जाएं, और कहा और निकलने से पहले मुझे फोन करें, और कहा मुझे आपको पेंटोथल का एक टीका देना होगा, और कहा तब जब मैं करता हूँ, कहा यह आपको 5 मिनट के लिए नींद में ले जाएगा। मेरी छोटी लड़की का दांत निकाला गया और भाई नॉर्मन की छोटी लड़की का, एक 5 मिनट की निद्रा। मैंने सोचा इससे मुझे परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा तो फिर ये मुझे संतुष्ट कर देगा इसे देखकर। और फिर अगली सुबह मैं पलंग पर से उठा और चारों ओर देखा, मैंने डबल बेड को देखा, मेरी पत्नी उस पर थी, वो अभी तक नहीं जागी थी, और मैं खिड़की में से उस बड़े पर्वत कैटिलाना को देख रहा था जहाँ मैं रहा था, और मैंने वहाँ देखा जहाँ प्रभु के दूत ने तलवार को मेरे हाथ में दिया था, जहाँ 7 स्वर्गदूत जो आपने चित्र में देखे प्रकट हुए थे, महान चीजें घटित हुई थी। और मैंने देखा, और जैसे मैंने उधर देखा जहाँ मैं फिर से पेड़ के पास खड़ा था, ठीक जहाँ गिलहरियाँ थी, मैंने वहाँ देखा, मैंने सोचा वो गिलहरियों की गुफा है, और मैंने सोचा आश्चर्य यदि वो अब भी वहाँ हो दर्शन में। मैंने पेड़ को एक ओर से रगड़ा, वो बाहर आई। इसके पहले कि मैं अपनी पलक झपकूं, वो अजीब से दिखने वाली गिलहरी थी जो मैंने कभी देखी। इन प्रतीकों और चीजों को जानने से आपको मेरी सेवकाई को जानना है। वो मुझ पर कूदी परंतु चूक गई, वो मेरे मुंह से चूक गई, मेरे सीने से टकराकर नीचे गिर गई। और जैसे ही उसने किया तो मैंने किसी चीज को कहते सुना कि कैटिलाना पहाड़ पे जाओ। मैंने घूम कर कहा मैडा प्रिय क्या तुम जागी हुई हो, और मैंने उसे उठा दिया। उसने कहा क्या बात है, सुबह लगभग 5 बजे थे। मैंने कहा मैं यहाँ देख रहा था और प्रिय मैंने वो गिलहरी फिर से देखी। कैसी गिलहरी, मैंने कहा एक वो जो मैंने मायो की देखी थी। मैंने कहा आप जानते हैं इस बार वो मेरे मुंह से चूक गई, मुझ पर वार नहीं कर पाई, मेरे सीने से टकराई। मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो। मैंने देखा ओ जब से मैं छोटा लड़का था मैं ये देखने की बहुत ही प्रतीक्षा में था जो हुआ। यदि मैं कभी इसे देख सकूं, ये घटित हुआ, यहाँ तक कि नहीं इसके पहले मैं जान पाता कि दर्शन क्या था, यदि मैं इसे कभी घटित होते हुए देख सकूं, तब मैंने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा। जो कुछ भी उसने मुझे बताया वही जो मैं होऊंगा। और 40 वर्षों से मैंने इसकी प्रतीक्षा की और ये घटित हो गया। इसके पहले जब मैं मायो में था उसी समय मैं वहाँ पर था जब उन्होंने मुझे संदेश दिया और मैंने दर्शन देखा। अब मेरी बूढ़ी माँ महिमा में चली गई, बहुत ही अलग महिला। उसने अपने जीवन में 3 या 4 स्वप्न देखे और वे सदा सच्चे रहे। वो मुझे बताएगी और वो मुझे बताना आरंभ करेगी। मैं बताऊंगा, मैं कहूंगा ठीक है यहाँ रुको मामा, बाकी इसका मैं बताऊंगा, समझे? क्योंकि सदा जब आप मुझे अपना स्वप्न का अर्थ बताने के लिए बताते हैं आप सदा ठीक वैसा ही नहीं बताते कि क्या था। तब जब मैं उसे फिर देखता हूँ तो मैं ठीक वही देखता हूँ जो आपने स्वप्न में देखा, तब वो मुझे बताता है कि ये क्या है, समझे? अवश्य नहीं कि आप मुझे बताएं कि स्वप्न क्या है, वो स्वयं मुझे स्वप्न दिखाता है, समझे? और तब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आपने मुझे ये नहीं बताया और वो नहीं बताया, देखा? और इसलिए वो परमेश्वर है जो स्वप्न का अर्थ बता सकता है, एक स्वप्न दिखा सकता है, वो दिखा सकता है, वो अर्थ बता सकता है। और इसलिए तब भाई क्या बाइबल में इस प्रकार की चीज नहीं थी? कहा यदि तू सकता है, मैं अभी हुआ कि मेरे पास आया डेनियल, क्या नहीं था? नहीं, यूसुफ। अच्छा ये कहीं बाइबल में है, मुझे ये याद है। कहा यदि तू मुझे दिखा सको, यदि तू मुझे बता सके कि क्या है। ओ ये राजा नबूकदनज़र है, ठीक है। कहा यदि तू सके, यदि तू नहीं सकता, जादूगर ने कहा मुझे स्वप्न बताओ। उसने कहा ये मैं भूल गया, ठीक बात है, ये मुझे याद आया, तब मैंने इसके लिए सोचा। अब ध्यान दें, और मामा वो बोली, बिली बोली मैं वापस आता हूँ, यहाँ आओ पुत्र, और बैठ गई। उन्होंने कहा मुझे एक विचित्र स्वप्न आया है, मुझे स्वप्न आया कि मैंने तुम्हें बीमार पड़े देखा, बस मरने पर हो, अक्सर जैसे तुम्हारे पेट में। उसने मेरे लिए कितने खाने बनाए, और उसने कहा तुम एक पहाड़ पर घर बना रहे थे, और कहा मैंने देखा 6 सफेद पंडुकी आसमान से उतरी और बोल रही हैं, और एस के आकार में तुम्हारे सीने पर बैठ गई, और तुम देख रहे थे, और एक जो सामने थी तुमसे कुछ कहने का यत्न कर रही थी। कहा वे बहुत ही चिकनी सफेद पंडुकी थी, और उन्होंने अपने छोटे सिर तुम्हारे गालों पर रख दिए, और बोलती रही कू कू कू, और कहा मैं इसे समझ नहीं सकी। कहा वे बस कू 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 बोले जा रही थी। मैंने कहा ओ मैं इसे देखता हूँ, प्रभु की स्तुति हो। और कहा उन्होंने उस एस अक्षर को फिर से बनाया और वापस आकाश में चली गईं और कू 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 बोलती चली गईं, वापस घर जा रही थीं। अच्छा वो छोटा जानवर जो मैंने देखा 6 इंच लंबा था, पंडुकी की कतार जो मामा ने देखी 6 की थी, 6 अधूरा है। मैं जानता हूँ कि किसी दिन मैं उस 7वीं को भी देखूंगा। ये मनुष्य था, दुखी हो रहा था, और ऐसे ही और इस प्रकार वो चला गया। उस प्रातः दर्शन देखने के बाद मैं उठा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, मैंने अपने छोटे लड़के को लिया, जोसेफ को, स्कूल ले गया। वो टूसान में इस समय मुझे सुन रहा है। मैं उसे स्कूल ले गया और मैडम को बताया, मैं नहीं जानता कि मैं कब वापस आऊंगा, और मैंने कैटिलिना का मार्ग लिया पहाड़ की तलेटी में, और उस स्थान तक गया जहाँ प्रभु के दूत ने तलवार मेरे हाथ में दी थी बहुत ही जल्दी, और मैंने पहाड़ पर चढ़ना आरंभ कर दिया, बजाय इस मार्ग से चोटी पर जाने के जहाँ की बहुत सारे सांप और बिच्छू। आप जानते हैं एरिजोना कैसा है। मैं अपने दहने को मुड़ गया, किसी ने कहा अपने दहने मुड़ो, और मैं चोटियों के मार्ग पर चला गया, और मैं घूम कर गया, और मैं उन बड़े बड़े पत्थरों के पास से निकल रहा था जो इस आराधनालय से भी कई गुना बड़े हैं। वहाँ उन ऊंचे स्थानों पर थे जहाँ शायद ही कभी कोई व्यक्ति जा सका हो, और लगभग 11 बजे मैं 3 ओर से घिरे हुए स्थान में जा रहा था, पीछे जहाँ कुछ एक छोटा सा स्थान हिरनों की पगडंडियों के समान मुड़ा। मैंने अपनी कमीज उतार दी थी, मेरी टोपी मेरे हाथ में थी क्योंकि मैं पसीने से तर था, इसलिए मैं उधर मुड़ गया, और जैसे ही मैं उस छोटी सी खाड़ी में मुड़ा मुझे प्रभु की उपस्थिति का अनुभव हुआ। मैंने तुरंत टोपी हटाई और चारों ओर देखा, मैंने सोचा वो यहीं कहीं पर है, मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर है। मैंने सोचा ये क्या है, मैंने कुछ और कदम आगे बढ़ाए, मैंने कहा प्रभु आप यहीं कहीं हैं, और मैंने रास्ते में पड़े हुए देखा, और वहाँ वो छोटी गिलहरी पड़ी थी, कहीं छलांग लगाई थी और उसे चूक गई, और ये नागफनी पर जा गिरी, उगते हुए कैक्टस, ये सिर सीने और पेट के बल गिरी और वो मर गई थी। वो छोटी अजीब सी गिलहरी वो मेरे मुंह से चूक गई और उस नागफनी पर जा गिरी, और प्रभु की आवाज ने कहा तुम्हारा शत्रु मर गया। मैं वहाँ खड़ा हुआ और थरथराया, और मैंने अपना पैर लिया, अक्सर कौए खा लिया करते हैं, इसके कुछ ही दिनों बाद मैंने एक सांप मारा और आधे घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। वहां से सदा उकाब और कौवे उड़कर जाते हैं और वे कभी भी इसे उठा लेंगे। मैंने कोरल सांप मारा, ये बहुत ही खतरनाक सांप है जो हमारे यहाँ है, मेरे पास ही पड़ा रहा। उसके कुछ ही दिनों के पश्चात मैं वापस आने लगा कि इसे उठाकर दिखाऊं। कौवे ने उसे ले लिया, कौवे निकल रहे थे और वो बहुत समय से वहाँ पड़ा, दो दिन पहले जब से मैंने दर्शन देखा था। मैं विश्वास करता हूँ ये शनिवार था, मैं वहाँ सोमवार को था, इसलिए ये वहाँ थी, वहाँ मरी पड़ी थी। मैंने उसे पांव से कुचल दिया। मैं वापस गया, बैठ गया, वहाँ बैठ गया और थोड़ी देर रोया और प्रार्थना की। नीचे मीलों दूर ट्यूसान को देख रहा था, उल्टा मुड़ा और वापस आया, वो अभी वहीं पड़ी थी। जब मैं उस तीन ओर से घिरी हुई जगह में घुसा तो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर फिर से आया। मैं घूमता हुआ गया और पहाड़ के नीचे उतरा और जाकर अपनी पत्नी को बताया। मैंने कहा, प्रिय, मैं नहीं जानता कैसे, परंतु मैं इस पर विजय पाने जा रहा हूँ। डॉक्टर रेवेंसवर्थ, जब उसने मेरी जांच की, उसने कहा, ये पूरी रीति से आपके लिए असंभव है कि आप ठीक हो जाएं। उसने मुझे पेंटेटॉल की सुई लगाई, इसने मुझे 5 मिनट के लिए असर किया और मैं 10 घंटे सोया। इसलिए ये चीज, यहाँ तक कि एस्प्रिन ने मुझे लाभ नहीं पहुँचाया। इसलिए उसने मुझे एक सुई लगाई, उस नली को मेरे गले में डाला। जब मैं आता हूँ तो अगली सुबह मुझे बताया, उसने कहा, रेवरेंड, मुझे आपको ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु कहा, आपकी आमाशय की दीवारें इतनी सख्त हैं कि वे सूख गई हैं। मैंने इसे कभी नहीं देखा। उसने गैस्ट्रिटिस नाम का प्रयोग किया और मैं गया और जाकर शब्दकोश में देखा और इसने कहा, कुछ ऐसा जो सुकड़ गया हो, और कहा, आप इस पर विजय नहीं पा सकते। उसने कहा, यह आपको सदा रहेगा। और मैं एक निराश लड़का होता यदि प्रभु का दर्शन मुझे न मिलता। और अगले दिन किसी चीज ने कहा, वापस पहाड़ पर जाओ, और उस दिन बजाय एक मार्ग पर जाने के मुझे दूसरे मार्ग पर जाने की अगुवाई हुई। और मैं वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था और मेरे सामने बैठी थी और वहाँ साथ वो छोटी सफेद पंडुकियाँ बैठी थी, ठीक मेरी ओर देख रही थी। मैंने अपनी आंखें मलकर कहा, निश्चय ही ये दर्शन है, निश्चय ही यही है। मैंने देखा और मैंने कहा, छोटी पंडुकी, तुम कहाँ से आई हो? बहुत ही सुंदर सफेद, ये कबूतर नहीं हो सकता, ये उस जंगल में था, जो भी था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जिसका मैं दास हूँ और उसका वचन यहाँ मेरे सामने खुला रखा है, जानता है कि मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं। वहाँ एक पंडुकी बैठी, वहाँ बैठे हुए मेरी ओर ताक रही थी। मैं चला, मैंने सोचा, निश्चय ही ये एक दर्शन है। मैंने अपना सिर घुमाया, मैंने पीछे देखा, वहाँ तीन बैठी थी, वे छोटी सफेद पंख और जितनी सफेद हो सकती हैं, उसके छोटे पीले पैर और छोटी पीली चोंच वहाँ बैठे हुए मुझे देख रही थी। वो सीधे पश्चिम की ओर ताक रही थी। मैं उसके चारों ओर इस प्रकार से गया, मैं बिना बात के उसे नहीं छूंगा। मैं उस पगडंडी पर गया, मुड़कर देखा, वो अब भी बैठी हुई मुझे ताक रही थी। भाई, एक अब्राहम के पुत्र के समान मैं विचार नहीं करता कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा। जो भी है, मैं अच्छा होने जा रहा हूँ। तीसरे दिन मैं वापस गया, मैं ऊपर चढ़ रहा था। आप में से बहुत से उस दर्शन के विषय में जानते हैं। इंडियन चीफ पश्चिम की ओर उस दीवार पर जा रहा था। किसी चीज ने मुझे उस बड़ी चट्टान की ओर आकर्षित किया। दोपहर बाद कहा, उसके ऊपर अपने हाथ सटाकर प्रार्थना करो, स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि ये सत्य है। मैंने अपने हाथ चट्टान पर टिकाए और स्वर की ओर देखा और प्रार्थना करने लगा, और चट्टान के ऊपर से मैंने आवाज को आते सुना, कहा, तुम किस पर झुके हुए हो अपने हृदय के बल? मैं इस प्रकार से उठा, अपने नंगे कंधों के साथ, गर्मी से कमर के ऊपर नंगा था। मैंने पीछे देखा और वहाँ चकमक के पत्थर पर लिखा था, सफेद उकाब। ठीक वैसे जैसे दर्शन ने कहा, अगला संदेश सामने आएगा। मैं बहुत उत्तेजित हो गया था, मैं घर को भागा, कैमरा लिया और अगले दिन आया और उसका चित्र लिया। वो अब भी वही था, चट्टान पर लिखा था, व्हाइट ईगल, यानी सफेद उकाब। पंडुकी उकाब का मार्गदर्शन कर रही है। कैसे भी मैं जानता हूँ, इसके घटने से पहले मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर का कोई संदेह नहीं, अच्छा डॉक्टर है, मैं सोचता हूँ वो अच्छा मनुष्य है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं उस पर विजय पाने वाला हूँ। ये हो गया, ये समाप्त हो गया और मैं चंगा होने जा रहा हूँ। कुछ क्षणों पहले जैसे अर्नी ने गाया, मैं वैसे ही सोच रहा था सफेद पंडुकी के पंखों पर, उसकी लय कैसी है, अर्नी मेरे लिए शुरू करो। पंखों पर हिमश्वेत पंडुकी, इसे मेरे साथ गाएं। परमेश्वर ने अपना शुद्ध मीठा प्रेम नीचे भेजा, ऊपर से एक चिन्ह था पंडुकी के पंखों पर। मैं समझता हूँ अर्नी ने इसके दो पद और बनाए हैं, मैं आपको तीन पद बनाने जा रहा हूँ। नूह भटक गया उस बाढ़ पर बहुत दिनों तक, उसने भूमि की खोज की बहुत तरीकों से, उसे कुछ परेशानी थी परंतु ऊपर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया पंडुकी के पंखों पर। पंडुकी के हिमश्वेत पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध और मीठा प्रेम नीचे भेजा, ऊपर से एक चिन्ह था पंडुकी के पंखों पर। यीशु हमारा बचाने वाला एक दिन पृथ्वी पर आया, वो चरनी में जन्मा, भूसे की चरनी में, यद्यपि यहाँ तिरस्कृत किया गया परंतु ऊपर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसका चिन्ह हमें दिया पंडुकी के पंखों पर। सफेद पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध मीठा प्रेम नीचे भेजा और एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। यद्यपि मैंने दुख उठाया है, बहुत से तरीकों से मैं चंगाई के लिए रोया दिन और रात दोनों, परंतु विश्वास को नहीं भूला था। ऊपर पिता के द्वारा उसने अपना चिन्ह मुझे दिया पंडुकी के पंखों पर। हिमश्वेत पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध और मीठा प्रेम नीचे भेजा, ओ एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। हिमश्वेत पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध और मीठा प्रेम नीचे भेजा, एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। प्रिय परमेश्वर, मैं आपको इन चीजों के लिए धन्यवाद देता हूँ। पिता, आपने नूह को ये चिन्ह दिया, आपने संसार को चिन्ह दिया, आपने मुझे चिन्ह दिया, और अगले दिन उस उड़ते उकाब को देखा, ओ परमेश्वर वहाँ से अब एक संदेश आ रहा है, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि पंडुकी को अगुवाई करने दें, प्रभु से ग्रहण करें, मेरी उस विश्वास की अगुवाई करें जो मेरे पास इससे पहले कभी नहीं था। परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि ये ठीक होने जा रहा है, इसलिए मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, और आज रात्रि अपना संदेश फिर से भेजें प्रभु वचन का पंडुकी के पंख पर। प्रिय स्वर्गीय पिता, इसे प्रदान करें, और आज रात्रि प्रत्येक जो इस मंच पर से होकर जाए और बाहर वहाँ जो समस्त राष्ट्र में सभाएं हैं, उन्हें पाए आपका महान विश्वास कि पंडुकी उनके हृदयों में उतरे और उन्हें विश्वास दे प्रभु उनकी चंगाई के लिए। याद रखें, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो नूह को संदेश भेज सकता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को संदेश भेज सकता था, मुझे भी भेज सकता है, इसे दूसरों को भेज सकता है। मैंने प्रार्थना की कि पंडुकी हर हृदय में अभी उड़ेगी प्रभु, अपनी छोटी सुंदर चोंच और फुसफुसाहट, कि उसके कोड़ों के द्वारा मेरे घावों और कोड़ों से तुम चंगे हुए। परमेश्वर, हमारे अपराध मिटा दिए जाएंगे, हमारे पाप हमें क्षमा कर दिए जाएंगे, और हमारी बीमारियां चंगी हो जाएंगी। ये आपके हाथों में है पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने झुके हुए सिरों के साथ एक और मिनट। कितने यहाँ ये कहना चाहेंगे यदि आप सकते हैं और ये कहना चाहते हैं, भाई ब्रणम मैं अपने सारे जीवन गलत रहा, मैंने परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, परंतु आज रात्रि मैं समर्पण के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पंडुकी आज रात्रि मेरे हृदय में उड़कर आएगी, मैं उसके पंखों की फड़फड़ाहट को अनुभव कर सकता हूँ जैसे वो भीतर आती है। अपने हाथ उठाएं, क्या आप उठाएंगे? या आज दिखने वाली भक्त मंडली और सारे भवन में, वहाँ बाहर भक्त मंडली राष्ट्र में है, वहाँ भाई हंट, भाई कोलमैन, बाहर भाई लियो और वे नीचे टूसान में है, ब्रणम आराधनालय में, पश्चिमी किनारे में, जहाँ कहीं हो अपने हाथ उठाएं। मैं चाहता हूँ कि पंडुकी आज रात्रि उड़कर मेरे हृदय में आए। परमेश्वर का मधुर प्रेम मेरे पास हिम श्वेत पंडुकी के पंखों पर आए। पवित्र आत्मा प्रभु आज रात्रि मेरे हृदय में ले आए और मेरे हृदय में वो विश्वास दे जिसकी मुझे आवश्यकता है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे। घायल पंडुकी संदेश को वापस लाई है। ओ परमेश्वर, ये समाप्त हो गया, हम ये विश्वास करते हैं, हमें इसका विश्वास करने के लिए विश्वास दें। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हिम श्वेत सफेद पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध मीठा प्रेम नीचे भेजा। ये एक ऊपर का चिन्ह था पंडुकी के पंखों पर। वो पंडुकी कहाँ से आई होगी मैं नहीं जानता, उसे वहाँ भीड़ में नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। और वो क्यों सफेद थी? स्वर्गीय पिता जानता है, वो ऐसी सफेद थी जैसे मेरी कमीज। वहाँ वो बैठी थी, परंतु ये हिमसी श्वेत पंडुकी के पंखों पर था। परमेश्वर ने अपना शुद्ध मीठा प्रेम नीचे भेजा। ओ ऊपर से एक चिन्ह पंडुकी के पंखों पर। सफेद पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध मीठा प्रेम नीचे भेजा। ओ एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। ओ क्या आप वास्तव में नम्र अनुभव नहीं करते? आइए हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं और इसे गाएं। हिमसी श्वेत पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध मीठा प्रेम नीचे भेजा। एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। आइए हम उसकी ओर अपने हाथों को उठाएं और इसे गाएं। हिमसी श्वेत पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध और मीठा प्रेम नीचे भेजा। एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर।
On the floods many days, he searched for land in various ways.
नूह भटक गया था बाढ़ पर बहुत दिनों तक, उसने भूमि को ढूंढा बहुत प्रकार से, उसके साथ परेशानी थी परंतु ऊपर से नहीं। परमेश्वर ने अपना चिन्ह नीचे भेजा पंडुकी के पंखों पर। हिमसी श्वेत पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध मीठा प्रेम नीचे भेजा। ओ एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर।
Jesus our Savior came to earth one day, born in a stable, in a manger of hay.
यीशु हमारा बचाने वाला एक दिन पृथ्वी पर आया, चरनी में जन्म लिया, भूसे की चरनी में। यद्यपि वो तिरस्कृत किया गया परंतु ऊपर से नहीं। परमेश्वर ने हमें उसका चिन्ह दिया पंडुकी के पंखों पर।
ओह
हिमसी श्वेत पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध और मीठा प्रेम नीचे भेजा, एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। क्यों मैं एक बूढ़ा मनुष्य अपने सारे जीवन दुख उठाया, उसने मुझे अब क्यों चंगा किया? मैं विश्वास करता हूँ मैं इस पगडंडी पर फिर से चलूंगा। मुझे संदेश लाना है और आज रात्रि मैं अपने पिता से कहता हूँ, जैसे उस दिन जूनियर ने स्वप्न देखा इस पंडुकी के पंखों का इन खिड़कियों पर घूम रही है। प्रभु आपका दास सेवा के लिए उपस्थित है। आमीन, मैं तैयार हूँ। हिमसी श्वेत पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध मीठा प्रेम नीचे भेजा, एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। आइए विश्वास करें कि वो भक्त मंडली पर मंडरा रहा है। हिमसी श्वेत पंडुकी के पंखों पर प्रभु हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपना शुद्ध और मीठा प्रेम नीचे भेजा, एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। आप जिनके पास प्रार्थना पत्र हैं, यहाँ इस गलियारे में यहाँ सामने आए, खड़े हों, यहाँ गलियारे में आगे आए इस ओर से। हिमसी श्वेत पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध मीठा प्रेम भेजा, एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। वे जो प्रार्थना पत्र के साथ हैं, इस पंक्ति में अपने बाईं ओर बाहर आ जाएं। हिमसी श्वेत पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध और मीठा प्रेम नीचे भेजा, एक चिन्ह ऊपर से भेजा पंडुकी के पंखों पर। ओ हिमसी श्वेत पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर ने अपना शुद्ध और मीठा प्रेम भेजा, एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। वो बीहड़ में पंडुकी कहाँ से आई? मैं कहूँगा परमेश्वर ने देखा अब्राहम को एक मेड़ा, उसकी चिन्ह की आवश्यकता है। वो यहोवा येरे है। प्रभु अपने लिए एक बलिदान दे सकता है। इस पर विचार करने को वही परमेश्वर उसी प्रेरणा के द्वारा, उसी प्रकार के लोगों के द्वारा पंडुकी को भेजा। अब वो अब भी परमेश्वर है। यहोवा येरे कुछ भी का प्रबंध कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो। क्या आप नहीं करेंगे जबकि आप प्रार्थना पंक्ति में होकर आ रहे हैं? परमेश्वर से मांगे कि आपके लिए पंडुकी के पंख पर दे। पंडुकी पवित्र आत्मा का आत्मा आपके हृदयों में विश्वास दे कि विश्वास करें कि आप चंगे होने जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सबको जो पैरों पर खड़े हैं लूं, आप समझे। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई ब्राउन का अपना स्थान, भाई जैक क्या कहा? ठीक है, अच्छा है। ये भाग यहाँ पहले इधर से आएगा, ये पंक्तिबद्ध है। वो भाग जो वहाँ पीछे है ठीक इनके पीछे लग जाए। ये पीछे कतार में है और आप पीछे यहाँ घूमते हुए प्रार्थना के लिए आए। अब मैं निश्चित हूँ कि ये पंक्ति अधिक तेज नहीं आ रही है। हम थोड़ा समय लेने जा रहे हैं ताकि हम वास्तव में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें जहाँ तक हो सकता है। और मैं अपना संदेश छोटा करता हूँ थोड़ा सा, और आप सबने पकड़ लिया ताकि मैं इस प्रार्थना पंक्ति को ले सकूं। ये उन दिनों के सम्मान में यादगार पंक्ति है जब भाई जैक मूर, भाई यंग ब्राउन, आपकी पत्नियां आपको जाने दें और आप यहां आए और हम कैलिफोर्निया में गए और सारे एरिजोना में, सारे रेगिस्तान से होते हुए और बीमारों के लिए प्रार्थना की। आप जानते हैं क्या, आज लोग जीवित जो फिर भी मर रहे हैं और अब भी जीवित हैं उस जतन के कारण। ये क्या करता है? ये हर कलीसिया में दिव्य चंगाई को उभारता है, जो भी राष्ट्र में है, यहाँ तक कि प्रेस्बिटेरियन और आदि में भी। उन्होंने इसने उनका मुंह बंद कर दिया, क्योंकि ये परमेश्वर ने किसी को अभिषेक के लिए लिया कि गोलियत को मारे, ये दर्शाने के लिए कि ये किया जा सकता है। तब बाकियों ने हिम्मत की, ये ठीक बात है, और बढ़ता गया। ये फिर से किया जा सकता है, क्योंकि वो अब भी अपना प्रेम पंडुकी के पंखों पर भेजता है। मसीहो, मैं चाहता हूँ कि आप सुने। यदि मैं यहाँ खड़े होकर अलौकिक बातों का उल्लेख करने लगूं, जिन चीजों को मैंने घटित होते हुए देखा पिछले 3 वर्षों में ही, तो मैं यहाँ अगले शनिवार तक रहूंगा आपको बताते बताते। मैं इतना अधिक नहीं बताता, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं, परंतु मैं आपको सत्य बताता हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। हम महान सर्वशक्तिमान यहोवा की महान अगुवाई में रह रहे हैं। यही पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के साथ था, नए नियम की कलीसिया के साथ। वो आज यहाँ अपने नाम के निमित्त अन्य जातियों में से अन्य जाति की दुल्हन ले रहा है। विश्वास करें, क्या आप लोग नहीं करेंगे? यदि आपने कभी इसका विश्वास किया, तो अभी इसका विश्वास करें। यही जो मैं चाहता हूँ कि आप इसे करें। हम नहीं जानते कि आज रात्रि क्या घटित होगा, हम नहीं जानते कि क्या घटित होगा, हम बस आशा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपा करके प्रभु यीशु के नाम में, मैं उसके दास के समान निवेदन कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जब आप भक्त मंडली के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप सब कुछ मिला जुला कर देते हैं, परंतु यदि आप मुझ पर उसके दास के समान विश्वास करें, यदि जरा भी संदेह है, ये पाप है, संदेह, अविश्वास, यदि आपके हृदय में ये तिन कभर भी है, तो पिता से कहें कि इसे अभी निकाल दें, समझे प्रभु। और जब आप सच्चे विश्वास के साथ आते हैं, अब मेरे हाथों का कोई अर्थ नहीं है जब तक पहले ये आप पर प्रभाव ना डाले, तब जब ये आता है ये उसको बुझा देगा, आप चंगे हो जाएंगे। ये ठीक बात है, आप जाएंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, आप इसका विश्वास करेंगे। अब मैं आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और अब जब आप ये करते हैं, तो आप एक दूसरे पर भी अपना हाथ रख लें। इसलिए हम और आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जिस पर आपने अपना हाथ रखा है। तब मैं आपको पंक्ति में होकर लाने जा रहा हूँ। अपना हाथ जो आपके साथ पंक्ति में है उस पर रखें। प्रिय परमेश्वर, मैं इन बातों को कहने का कोई और दूसरा तरीका नहीं जानता प्रभु। मैं केवल इतना बताना जानता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो सत्य है, और आज रात्रि आप मेरे गवाह हैं कि मैं सत्य बता रहा हूँ प्रभु। मेरा विश्वास और मेरी अपनी चंगाई भविष्य में, मैं नहीं जानता कब, मैं नहीं जानता कैसे, मैं इसे नहीं समझता, परंतु मैं इसका विश्वास करता हूँ प्रभु कि मैंने ऊपर से चिन्ह पाया है। वो 7वीं पंडुकी अंत में यहाँ पर है, 7वां इंच जल्द ही उस जानवर पर समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। परमेश्वर, मैं आपके लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज रात्रि आप हमें ऐसा अभिषेक करें, हम में जो अपने हाथों को रखे हैं होने पाए वे ठीक हो जाएं। इसलिए नहीं कि ये हम हैं, परंतु इसलिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आपने कहा जो विश्वास करे उनके ये चिन्ह होंगे। प्रभु, विश्वास करने में मेरी सहायता करें, और उनके हृदयों को विश्वास उपज की भूमि बनाएं, और होने पाए मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए हर बीमार और अपाहिज जो इस भवन में है, या राष्ट्र भर में जो भवन जो अब इन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं ये मांगता हूँ, आमीन। विश्वास करें आप जो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। अब ये पंक्ति विचारों को परखने की नहीं है, उदासी, डर, मैं जानता हूँ ये क्या है। बेचारे छोटी चीज, उसने कहा उसने जीवन में कभी शांति नहीं देखी, वही चीज जो मैं, सो नहीं सकता, अधीरता, तनाव। प्रिय परमेश्वर, मेरे अभिलेख में लिख दे प्रभु कि मैंने सत्य बता दिया। मैं इस छोटी महिला के लिए कैसा अनुभव करता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि आप उसके पास विश्वास की प्रवृत्ति ऊपर से भेजेंगे, ये जानते हुए कि आप अपने वचन के लिए बाध्य हैं और आप हर वचन को पूरा करते हैं। होने पाए स्वर्ग का परमेश्वर इस भय को मेरी बहन से ले ले और उस पर हाथ रखने के द्वारा मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और इसे दोषी ठहराता हूँ। यीशु मसीह के नाम में ये इससे बाहर आ जाए, आमीन। अब देखिए बहन, अब आप मेरा विश्वास करती हैं? यदि आप सीधी इधर से आरंभ कर सकते हैं, क्रूस के साथ से, इस रात्रि से जो आपके पास है उसका इनकार करें। देखिए, ये कहते रहिए अब ये मेरे पास नहीं है, तब ये आपको छोड़ जाएगा। बहन पामर, हमारी बहन, बहन पामर, उनका पति मेरा प्रिय मित्र है, जॉर्जिया या अलबामा से, जॉर्जिया, जॉर्जिया, और वो आराधनालय को आ रही थी। जब मैं आराधनालय में प्रचार कर रहा था, वे गाड़ी चला रहे थे एक सभा को सुनने के लिए 1500 मील। भाई पामर ने अपनी कार से नियंत्रण खो दिया, या लड़के ने, जब वे कोने पर से मुड़ रहे थे और वे रगड़ गए। बहन पर इसका असर पड़ा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, अपने इस दास को छुड़ा ले। उसकी बेचारी पत्नी, ईमानदार, सच्ची, मसीह में छोटी दासी, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे मैं अपने भाई जैक मूर के जो यहाँ हैं, उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें चंगा करेंगे और स्वस्थ कर देंगे, यीशु के नाम में, आमीन। सीधे पैर में, और आप उसके लिए खड़े हैं। उसका छोटा लड़का अपाहिज है, उसके पेट और कमर में चोट लगी है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, वो हिमश्वेत पंडुकी अब उसके हृदय की गहराई में बैठ जाए। हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे पापों के लिए कुचला गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। मैं अपने भाई के लिए ऐसा होने के लिए मांगता हूँ और उसके छोटे लड़के के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत ही तेज सिर दर्द और पैर की मोच जो उसे परेशान कर रही है जबकि वो कार्य कर रहा है। प्रिय परमेश्वर, अपनी चंगाई की आशीष इस युवक व्यक्ति को प्रदान करें, जैसा कि हम परमेश्वर के दास अपने हाथ उस पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उन्हें महिला वाली परेशानी है, स्त्री वाली, और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी चाहती हैं। प्रिय परमेश्वर, जैसा कि मैं विश्वास की प्रार्थना इस छोटी महिला के लिए आपको चढ़ाता हूँ, होने पाए स्त्री वाली परेशानी चली जाए, होने पाए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पंडुकी के पंखों पर आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहन परमेश्वर आपको आशीष दे। उसकी आंखों पर बड़ा हुआ मांस है और उसकी प्रिय साथी। प्रिय परमेश्वर, आप इस मनुष्य के हृदयों को जानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता, यीशु के नाम में, कि आप इस निवेदन को प्रदान करेंगे जो इस भाई ने मांगा है, और हमारी आज्ञाकारिता आपके वचन के लिए उस पर हाथ रखने की, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। उसके बाईं ओर एक फोड़ा है और उसकी आवाज भी खराब है। प्रिय यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बहन को चंगा कर देंगे। अपने हाथों को इस पर यीशु मसीह के नाम से रखता हूँ कि वो चंगी हो जाएगी, आमीन। मेरी बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। बेचारी बहन, मैं आपकी परेशानी को देखता हूँ, सूजा हुआ हाथ, किडनी, मूत्राशय और टखना अपनी जगह से हट गए हैं। ओ पिता परमेश्वर, इस बहुमूल्य महिला को चंगा करता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे कि मैं अपने हाथ यीशु मसीह के नाम से इस पर रखता हूँ, आमीन। बहन परमेश्वर आपको आशीष दे। यही विधि है, ये हो जाएगा। आपको सुनाई देता है इस माइक्रोफोन पर, क्या आप नहीं सुनते? यहाँ जो भी है, इंजीनियर, यदि आप इसे जरा ऊपर उठा दें, भक्त मंडली इसे सुन सकती है, गवाही के लिए, या जो भी वे कहते हैं जब वे आते हैं, उनके लिए प्रार्थना में रहें। जब आप इसे सुनते हैं, जब मैं प्रार्थना करना आरंभ करता हूँ, आप मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं इस अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आप इससे सुनेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आज्ञा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर, आप ये गवाही सुनते हैं, आप सुनते हैं कि शत्रु ने इसके साथ क्या किया। हम यीशु के नाम को लेने का यत्न कर रहे हैं और इस शत्रु को हराते हैं। वो पहले ही क्योंकि कुचला गया, धारीदार पंडुकी परमेश्वर के घर के फर्श पर संदेश के साथ आई है। ये हो गया, इसे प्रदान करें, होने पाए, इसका विश्वास करें पिता, यीशु नाम में। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी इस बहन को चंगा करेंगे। होने पाए परमेश्वर कि पंडुकी आज रात्रि उसे गवाही दे कि उसने ये उसके लिए कर दिया, ताकि वो भली चंगी हो सके, यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने भाई पर जो यहाँ खड़ा है अपने हाथ रखता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसके पास पर्याप्त विश्वास है प्रभु। अब होने पाए कि वो अपनी चंगाई ग्रहण करे और अपने स्थान पर चंगा होकर जाए, यीशु नाम में। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ। प्रिय परमेश्वर, सहायता करें कि परमेश्वर का विश्वास इस समय उसके गहराई में चला जाएगा और अब्राहम के समान हो और उन चीजों को जो नहीं है उन्हें कहे, यद्यपि वो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, यीशु नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर, आप ही हैं जो सच्चा निर्णय ले सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय परमेश्वर, जैसा कि ये युवा महिला इसके लिए मांगती है, वो इसे ग्रहण करने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर, हम अपनी बहन पर आपकी बात का पालन करते हुए हाथ रखते हैं, जो आपने करने को कहा। यह हमें बहुत वर्षों पहले ले जाता है प्रभु, जब से हम इस प्रार्थना की पंक्ति को इस प्रकार चलाते हैं, परंतु हम जानते हैं कि तब क्या घटित हुआ। हम जानते हैं कि आप आज रात्रि भी वही परमेश्वर हैं। यदि लोग आज रात उसी विश्वास को ले सकें, मैं यीशु के नाम में अपनी बहन की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय परमेश्वर, यहाँ मैं अपने भाई के ऊपर हाथ रखता हूँ और उसकी चंगाई मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता, आज रात्रि मैं इस बहन को आपके सामने लाता हूँ और इस गवाही के लिए मैं अपने हाथ उस पर रखता हूँ कि मैं आपकी सामर्थ की गवाही के लिए खड़ा हूँ, आपके दर्शनों की गवाही के समान खड़ा हूँ, आपका वचन, और मैं गवाह हूँ कि आप परमेश्वर हैं, और आपकी आज्ञाकारिता मैं अपने हाथ इस पर रखता हूँ, अपने परमेश्वर के वचन की और उसकी चंगाई मांगता हूँ, आमीन। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने भाई पर हाथों को उसी प्रकार रखता हूँ, आपकी सामर्थ की गवाही के समान, मैं इसके लिए चंगाई मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या उसने कहा वो चंगा करने हारा? कहा कि ये मनुष्य कहीं ऊपर से है, अरकनसास से, उस पर आते चंगे हो गए। एक अंधा मोची, आप कहानी जानते हैं, ये रेडियो पर था, और मैंने कहा, मैंने सोचा मैंने एक ढोंगी वाला काम किया। मैंने कहा, आप विश्वास नहीं करते कि ये सत्य है? वो बोली, जी हाँ मैं करती हूँ। और मैंने कहा, क्या आप इस दिन में विश्वास करती हैं जब परमेश्वर कुछ इस प्रकार का कार्य करेगा? जब उसने कहा, श्रीमान मैंने धार्मिक कार्यक्रमों को सुना है, उसने कहा, मैं मसीही हूँ। उसने कहा, मैंने कार्यक्रम सुने हैं, मैंने सुना है कि वो मनुष्य इस सुबह चंगा हुआ है, वो अंधा मोची, उन्होंने उसे कलीसिया से बाहर निकाल दिया, वो बहुत शोर कर रहा था, एक से दूसरी कलीसिया में, अपनी टोपी को छड़ी के ऊपर के सिरे पर रखकर घुमाता रहा, ऊपर नीचे कलीसियाओं में भाग रहा था, हर कोई नगर में शोर कर रहा था, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, एक अंधा मोची। मैंने कहा, क्या आप इसका विश्वास करती हैं? और वो वहाँ थोड़ी देर खड़ी हुई, रिमझिम वर्षा हो रही थी। उसने कहा, श्रीमान यदि आप मुझे वहाँ ले चलें जहाँ वो है, तब मैं अपने पिता को ढूंढ लूंगी। तब मैंने इस प्रकार से महसूस किया, तब मैंने कहा, हो सकता है कि मैं वही हूँ जिसे आप ढूंढ रही हूँ। उसने कहा, उसने मुझे कोर्ट की किनारी से पकड़ लिया, बोली, क्या आप चंगा करने वाले हैं? मैंने कहा, नहीं बहन, परंतु मैं भाई ब्रणम हूँ। उसने कहा, मुझ पर दया करें। मैंने उस बेचारी बूढ़ी अंधी फैनी क्रॉसबाई के विषय में सोचा, जबकि तू दूसरों को बुलाता है तो मुझे ना छोड़ जाना। देखिए, उसने एक को चंगा किया, वो इसे भी चंगा कर सकता है। मैंने अपने हाथ उसकी आंखों पर रखे, मैंने कहा, प्रिय यीशु, एक दिन एक पुरानी कठोर क्रूस सड़क पर ऊबड़ खाबड़ झटके खाती आ रही थी, कंधों पर से नीचे की ओर बहता लहू, वो निर्बल देह जिसने इसे उठा रखा था बोझ से दब गई, एक अश्वेत मनुष्य शमौन नाम कुरेनी का, उसने आकर क्रूस उठाया, उसे उठाए रखने में उसकी सहायता की। मुझे निश्चित है कि आपको ये याद है पिता, और उसका एक बालक यहाँ अंधकार में लड़खड़ा रहा है। मुझे निश्चय है कि आप समझ रहे हैं। उसने कहा, परमेश्वर की महिमा हो, मैं देख सकती हूँ। मैंने कहा, क्या आप देख सकती हैं? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा, उन बत्तियों को गिनो, और उसने उन्हें गिना। मैंने कहा, मैंने किस रंग का सूट पहन रखा है? आपने सिलेटी रंग का सूट पीली टाई के साथ, यही है, वो देख सकती थी। ओह, परमेश्वर मानवता का सम्मान करता है। ओह, वो स्वयं अपने में जो बनाएगा और दिव्य प्रेम में अनगिनत जय घटित होने देता है। प्रिय परमेश्वर, दया करें और मेरी बहन को चंगाई दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय परमेश्वर, जैसा कि मैं इस निर्बल झुर्री वाले हाथ को लेता हूँ, केवल आप जानते हैं कि क्या घटित हुआ। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वही हाथ आज रात्रि मेरे पास हैं, शमाउन के उस दिन के उन्हीं हाथों के समान आलिंगन करेंगे। प्रभु, अपने दास को शांति से विदा कर, क्योंकि अब मैं तेरे उद्धार को देखता हूँ। होने पाए ये इस पर आए प्रभु, आपका उद्धार, और इसे यीशु नाम में स्वस्थ कर दें, आमीन। मुकदमे में अविश्वासी यीशु मसीह पर दोषारोपण करता है। आपको याद है एक मुकदमा, कैसे वो उनके पास वकील आदि सब थे, और कौन किसके लिए खड़ा हुआ, और हमारे सामने वकील था शैतान जो विवाद करने जा रहा था। अब मुकदमा सामने लाया गया और उसने कहा, श्री डाउटर यानी कि शक्की, वो आया और उसने कहा, मैंने एक प्रचारक को कहते सुना, बीमारों पर तेल लगाओ, बाइबल ये कहती है, मुझ पर तेल लगाया गया था, चंगा नहीं हुआ था। दूसरे वाले ने कहा, बीमारों पर हाथ रखो, वे चंगे हो जाएंगे। वो अभियोग लगाने का यत्न कर रहा था, परंतु जब गवाह सामने आए, यहाँ ये था, परमेश्वर ने उन्हें बताया, कहा तुम रहे होगे। उसने कहा, ये 6 महीने हो गए जब उसने मुझ पर हाथ रखा था, और आपका वचन कहता है कि बीमारों पर हाथ रखो और वे चंगे हो जाएंगे, और मुझ पर आपके एक अभिषेक दासों के द्वारा हाथ रखे गए, और मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। इसलिए आप झूठे नाटकबाज हैं, क्योंकि आपके वचन का वो अर्थ नहीं जो ये कहता है। इसलिए जब गवाही आती है तो ये सच्ची थी कि उसका वचन सत्य है। उसने कभी नहीं कहा कब वो इसे करेगा। उसने कहा, जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। देखिए, यही है जो उसने कहा, वे चंगे हो जाएंगे। इसलिए चाहे ये तीखा आश्चर्यकर्म हो, एकदम हो गया इस प्रकार से, या चाहे ये परमेश्वर की आज्ञा पालन, ये उस पर निर्भर करता है, उस व्यक्ति में, समझे। परंतु यदि व्यक्ति इसका विश्वास करे, मैं चिंता नहीं करता ये कितना समय लेता है। उसने अब्राहम से कहा कि तुझे सारा से एक बालक होने जा रहा है, और बालक 25 वर्षों तक नहीं आया। उसने नूह को बताया कि वर्षा होने जा रही है, नूह के समय बाढ़ आई, नाव बाढ़ के लिए बनाई गई, बाढ़ आने के बहुत वर्षों पहले, परंतु नूह जान गया था कि वर्षा आने वाली है। बाइबल ने कहा, विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचा लेगी, और परमेश्वर उन्हें उठा के खड़ा करेगा। कब? उसने ये नहीं कहा। परमेश्वर न्यायी है, वो सच्चा है, बस पढ़ें कि उसका वचन क्या कहता है। यही जो आज रात्रि मैंने किया है, बीमार पर हाथों को रखा है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि उनमें से प्रत्येक चंगा होने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक, क्या आप भी यही विश्वास करते हैं? अब इन दुखी लोगों के लिए विश्वास करें। वहाँ एक छोटी महिला है, लगता है कि मुझे जानना चाहिए। मैंने उसके लिए बीती रात्रि प्रार्थना की थी वहाँ उस प्रार्थना पंक्ति में। उसका क्या नाम है? चैम्बर्स, चैम्बलेस। यदि वो छोटी महिला जीवित रहेगी, वो ठीक सामान्य जीवित रहे, पीड़ित ना होगी, तो निश्चय ही वो एक सुंदर स्त्री बने। वो अब वहाँ बैठी है, हाथ हिला रही है, सुंदर अच्छी आत्मा उस लड़की में, और वो वहाँ बैठी इस प्रकार से झटके ले रही थी। ओह, कैसे इसने मेरे हृदय को तोड़ा, कैसे मैंने इच्छा की, बस कैसे मैं करूँगा। यहाँ एक छोटा बालक है, बैठी हुई महिला ने उसे गोद ले रखा है, उसकी छोटी जुबान बाहर लटक रही है, उसकी छोटी पीड़ित देह। क्या होता यदि वो मेरा छोटा जोसेफ होता, क्या होता यदि वो मेरा छोटा पोता पॉल होता, क्या होता यदि वो रिबेका या सारा जो वहाँ पीछे बैठी है होती, क्या होता यदि श्रीमती सैमसन यहाँ मेरी पत्नी मैडा होती, ये युवा पुरुष जो यहाँ बैठा है बिली पॉल होता, ये उम्रदार स्त्री जो यहाँ बैठी है मेरी माँ होती, याद रखें, ये किसी का बालक है, किसी की बहन है, किसी की पुत्री है, किसी का पुत्र है, समझे? मैं इनका भाई हूँ, वो हमारा बचाने वाला है। वो सब जो मैं कर सकता हूँ, जो विश्वास मेरे पास है, उनके बदले चढ़ाता हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ। अब प्रभु मुझे दर्शन दिखा सकता है, वो मुझे बता सकता है इनमें से प्रत्येक के साथ क्या मामला है। मैं आपको ये प्रमाणित कर सकता हूँ, आप ये जानते हैं, परंतु ये उनको चंगा नहीं करता, ये उन्हें चंगा नहीं करता, नहीं, ये कुछ ऐसा है जो उनमें आना है। देखिए, और मैं आशा करता हूँ जैसा कि मैं जा सकता, आप में से हर एक को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता। ये आपको पाप से नहीं छोड़ाता, नहीं नहीं, मैं पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में पुनरुद्धार के लिए विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ लहू पुनरुद्धार है, देखिए, नहीं पानी नहीं, परंतु देखिए, मैं बपतिस्मा और बपतिस्मा दे सकता हूँ, परंतु आप केवल सूखे पापी जाकर जा सकते हैं और भीगे वाले ऊपर आ सकते हैं, जब तक आप पूरी रीति से प्रायश्चित ना करें, प्रायश्चित करें और फिर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें, समझे? यही जो मैं वननेस वालों से के अभियान से असहमत हूँ। पुनरुद्धार के लिए बपतिस्मा नहीं, नहीं, मैं विश्वास करता हूँ ये लहू जो शुद्ध करता है, पानी नहीं, समझे? प्रायश्चित और फिर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। अब मैं नीचे प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और ये लोग जैसे आपके लिए मेरे लिए हैं, इस पंक्ति में और भी अधिक। अब हम सब एक साथ मिल जाएं, और विश्वास में आप लोगों के हाथ और मेरा हाथ विश्वास में, प्रभु यीशु के हाथों को नीचे ला रहे हैं कि इन बेचारे पीड़ितों लोगों पर रखे। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? वे रुमालों के साथ बीमारों के लिए और पीड़ितों के लिए, सभा के बाद आप इसे ले सकते हैं। अब इनके लिए प्रार्थना करने में सहायता करें, क्या आप करेंगे? परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कुछ भी आपने आज रात्रि किया है। हम पंक्ति में आने वाले हर व्यक्ति के लिए आपको पहले से ही उनकी चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं इन रुमालों पर प्रार्थना करता हूँ, संभवतः कुछ जो सभा में नहीं आ सकते और उनके प्रियजन इन रुमालों को ले आए हैं। बाइबल में हमें सिखाया गया है कि वे पौलुस की देह से रुमाल छुआकर या कपड़ों से, अब वे लोग बीते समय में आपकी उपस्थिति में रहे, उन्होंने आपको सड़क पर देखा, उन्होंने आपको अपनी सभाओं में देखा, और उन्होंने आपके उसी आत्मा को पौलुस पर देखा, और वे जानते थे कि ये वो व्यक्ति नहीं है, ये आपका आत्मा जो उसके जीवन में प्रभुता कर रहा था, क्योंकि हम पौलुस को उन्हीं कार्यों को करते देखते हैं जो आपने किए। और अब प्रभु, आज के दिन ये लोग उसी परमेश्वर को अपनी कलीसिया में अपने लोगों के साथ देखते हैं, और वे ये रुमाल लाए हैं ताकि वे उन्हें यहाँ से लेकर अपने प्रिय जनों के पास ले जाएं। परमेश्वर, इसे प्रदान करें कि इनमें से प्रत्येक आपके अपने ही तरीके से चंगा हो जाएगा। हम कुछ भी विशेष रीति से नहीं मांग रहे हैं या किसी निश्चित स्वभाव में, हम बस मांगते हैं कि पिता, कि आपके अपने ही रीति से उन्हें चंगा करें। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ये विश्वास की प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में चढ़ाता हूँ, आमीन। मेरा संगति के साथ आपके विश्वास के आसपास अद्भुत समय रहा, आपकी उपस्थिति मसीह यीशु में। ये वो सभा रहेगी जो बहुत समय तक याद रहेगी कि क्या घटित हुआ था, प्रेम, सहयोग, संगति। और अब जब तक हम फिर ना मिले, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, वो जिसने सितारों को रात्रि में चमकने के लिए बनाया कि मार्ग में उजियाला दें जब ये धूमिल होता है, वो आपके मार्ग को बैतलहम के तारे से उजियाला दे कि आपकी अगुवाई पूर्णतः उसके वचन में समर्पित होने के लिए करे, मेरी प्रार्थना है। जब तक हम मिले, जब तक हम मिले, जब तक हम मिले, यीशु के चरणों पर, जब तक हम मिलें, जब तक हम मिलें, परमेश्वर आपके संग रहे जब तक हम फिर से मिलें। अब आइए हम खड़े हो जाएं। मेरा विश्वास तुझे देखता है। मैं इसे बदल दूंगा। मैं विश्वास करता हूं ये अच्छा है। मेरा विश्वास तुझे देखता है। तू कैलवरी का मेमना, दिव्य बचाने वाला। अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी सुन, मेरे सारे पाप को दूर कर दे। ओ मुझे इस दिन से, मैं संपूर्ण तेरा हो जाऊं। अब आइए हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं जब वे गाते हैं। जबकि जीवन की अंधेरी भूल भुलैया में मैं चलता हूँ और मेरे चारों ओर दुख फैले हुए हैं, तू मेरा अगुआ बन। घना अंधकार दिन में बदल जाए तेरी ओर एक ओर। अब ये मुझे अच्छा लग रहा है, क्या आपको नहीं? सफेद पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर अपना शुद्ध और मीठा प्रेम भेजता है। एक चिन्ह ऊपर से सफेद पंडुकी के पंखों पर। अब सफेद पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर अपना शुद्ध और मीठा प्रेम भेजता है। एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। यह हमारे अभियान का समाप्ति संदेश है। सफेद पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर अपना शुद्ध और मीठा प्रेम भेजता है। एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। अपने सिरों को झुकाएं, जैसे पहिए घर लौटते हुए गाना गुनगुनाते हैं, इंजन की गड़गड़ाहट। मैं विश्वास करता हूं ये होगा। आप पहियों की गुनगुनाहट सुनेंगे, इंजन की गड़गड़ाहट। हिमसी सफेद पंडुकी के पंखों पर परमेश्वर अपना शुद्ध मीठा प्रेम भेजता है। एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। पंडुकी परमेश्वर अपना शुद्ध मीठा प्रेम भेजता है। एक चिन्ह ऊपर से पंडुकी के पंखों पर। आपके झुके हुए सिरों के साथ मैं आपको आपके भाई नोएल।